السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. آج 24th پارہ ہے ہمارا. الحمدللہ، اللہ کے شکر احسان، اللہ تعالیٰ کا ہی شکر احسان ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کا فضل و کرم ہے کہ ہم یہاں تک پہنچ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے اور اللہ کرے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب سے وہ حکمت بھرے موتی چننے والے بنیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو سنوارنے والے بنیں انشاءاللہ. آج کی ہماری جو آیات ہیں، سورہ حامیم سجدہ، یعنی سورہ فصلت، سورہ فصلت کی آیت نمبر 30-36 ہے انشاءاللہ. ہم تلاوت سن ہی لیتے ہیں. ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں. سورہ حامیم سجدہ، آیت نمبر 30-36. جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے، یقیناً ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ نہ ڈرو نہ غم کرو اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی. وہاں جو کچھ تم چاہو گے تمہیں ملے گا اور ہر چیز جس کی تم تمنا کرو گے وہ تمہاری ہوگی. یہ ہے سامان ضیافت اس ہستی کی طرف سے جو غفور اور رحیم ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَأَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اور اس شخص کی بات سے اچھی بات اور کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نیکی اور بدی یکساں نہیں ہیں، तुम बदी को उस नेकी से दफा करो जो बेहतरीन हो। तुम देखोगे कि तुम्हारे साथ जिसकी अदावत पड़ी हुई थी यानी दुश्मनी, वो जिगरी दोस्त बन गया है। ये सिफत नसीब नहीं होती मगर उन लोगों को जो सब्र करते हैं, और ये मुकाम हासिल नहीं होता मगर उन लोगों को जो बड़े नसीबे वाले हैं। और अगर तुम शैतान की तरफ से कोई उकसाहट महसूस करो तो अल्लाह की पनाह मांग लो, वो सब कुछ सुनता और जानता है। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि हम रोज़ाना ये बात सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं कि कुरान करीम की हर आयत, चूँकि ये अल्लाह ताला का कलाम है, तो इसका हर लफ्ज़, इसकी हर आयत और इसका हर सूरा अपनी जगह बेहद अहम है क्योंकि ये अल्लाह का कलाम है। लेकिन हम उसमें से अपने लिए कुछ ऐसे नसीहत भरे मोती अपने लिए चुन रहे हैं, हिकमत वाले मोती, जिससे हम पूरे कुरान पर अमल कर सकें, कुरान की जो जो आयत हैं हम उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकें और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढाल सकें। और अल्लाह सुबहान तआला ने कुरान में हर तरह के वाक़यात जिससे हमें सबक मिल सकता है, या ऐसी आयतें नाजिल फरमाई हैं जिससे अहले ईमान को ढारस मिल सकती है, जिसकी बिना पर वो अपना काम एहसन तरीके से जारी रख सकता है जो भी उसका मिशन है। तो यहाँ पर बात की जा रही है उन लोगों की, इन आयतों को चूज़ करने का मकसद ही ये था, इन हिकमत भरी आयतों को जो कि जवाहरात कुरआनिया में से है, कि इसमें दरअसल उन लोगों की, कोई स्पेशल लोगों की बात की गई है, हर एक की बात नहीं है, ये वो स्पेशल लोग हैं, चुने हुए लोग हैं, कि इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, जिन लोगों ने कहा कि अल्लाह हमारा रब है, फिर उसके पर सुम्मा इस्तक़ामू, वो उसके पर साबित कदमी से जम गए, इस्तक़ामत अख्तियार की, उनके अंदर डिटर्मिनेशन था। तो जब ऐसे लोग जब अपने आप को अल्लाह ताला के सुपुर्द कर देते हैं, अल्लाह ताला के हवाले कर देते हैं, और पूरे होशो हवास के साथ, शऊर के साथ वो इस राह में अपना कदम जब रखते हैं, चाहे वो इस्लाम कबूल करते वक्त हो या इस्लाम मुसलमान होने के बाद अपने आप को अल्लाह के दीन के हवाले कर देना और अल्लाह के दीन के काम के लिए वक्फ कर देना, और जब लोग अपने आप को अल्लाह ताला के दीन के लिए वक्फ कर देते हैं, अपने आप को लगा देते हैं, हवाले कर देते हैं और इस्तकामत अख्तियार करते हैं, उनकी जो कमिटमेंट है या उनकी जो बातें हैं, उनके जो वादे हैं, वो सिर्फ लिप सर्विस नहीं होते बल्कि वो वाकई में दिल से अल्लाह ताला की राह में कदम रखते हैं और उस पर जमे रहते हैं। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि फिर क्या होता है, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, फरिश्ते उनके ऊपर नाजिल होते हैं, और फिर फरिश्ते सिर्फ नाजिल ही नहीं होते बल्कि क्या कहते हैं, अल्लाह तखाफ़ु वला तहज़नु, ना तुम डरो ना खौफ खाओ ना गमगीन हो, वअबशिरु बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून, तुम्हारे लिए खुशखबरी है, तुम्हारे लिए बशारत है, किसकी, उस जन्नत की जिसका तुमसे वादा किया गया है। सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी आयत है, और ये आयत आप देखें कि ये किस किस कदर अहले ईमान को ढारस बंधाती है, किस कदर ये आयत अहले ईमान को अपने काम में साबित कदम रख सकती है। और यही वो आयतें थी जिनको पढ़कर सहाबे कराम अपने काम में लगे रहते थे, डटे रहते थे, बंधे रहते थे, उन्हें कोई चीज़ डावाडोल नहीं कर सकी, उन्हें कोई दुनिया की ताकत, दुनिया का लालच उन्हें डावाडोल नहीं कर सका, वो ईमान लाने के बाद इस कदर उसके ऊपर साबित कदम रहे, इस कदर उन्होंने ऐसी इस्तकामत दिखाई कि आज मिसालें हमारे सामने मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। और हम अल्लाह ताला से पहले ही दुआ करें कि अल्लाह ताला हम पर वो बोझ ना डाल जो तूने हमसे पहले के लोगों पर डाला। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्तौना, रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना, रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला तौक़त लना बिही वाफ़ु अन्ना वाग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन, कि वाकई में आज हमारे अंदर ना इस्तेआत है ना उस तरह की हिम्मत है, तो अल्लाह ताला हम पर वो बोझ ना डाल जो तूने हमसे पहले के लोगों पर डाला था, और हमसे भूल चूक में जो भी गलतियाँ हुई हैं अल्लाह ताला उसे दरगुजर फरमा दे। लेकिन उन लोगों के वाक़यात जो सहाबे कराम हमारे गुजरे हैं, या उससे पहले अंबिया कराम थे, या सहाबे कराम के बाद जो सल्फ सालेहीन थे, हम देखते हैं कि कैसे कैसे उन लोगों ने हक बात कहने के लिए, हक की गवाही के लिए और इस दीन के काम को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने कैसी कैसी मुश्किलात का सामना किया। और क्या ये जो मुश्किलात उन पर आई थी, तो हम सब जानते हैं कि वो इंसान नहीं थे, वो इंसान ही थे, लेकिन उनको ये आयतें ढारस उनकी बंधाती थी, ये आयतें जब वो पढ़ते थे और इन आयतों पर से वो गुजरते थे, तो उनको महसूस होता था कि हमें डरने की और गम करने की क्या ज़रूरत, आज जो दुनिया में हम पर तकलीफें आ रही हैं, जो मुश्किलें आ रही हैं, जो मशक्क़त हमें झेलनी पड़ रही है, ये तो दरअसल एक्चुअली ये खुशखबरी की हमारे लिए अलामत है। तो ये जो उस वक्त उनके दिल को जो सुकून और इत्मीनान नसीब होता था, दरअसल ये क्या था, ये फरिश्तों की तरफ से, अल्लाह ताला की तरफ से मदद होती थी। हम सब जानते हैं ना कि अल्लाह ताला की तरफ से जो मदद आती है, अल्लाह ताला ने बाकायदा फरिश्ते भेजकर भी मदद की है मुसलमानों की, अहले ईमान की। और अल्लाह सुबहाना ताला ने फरिश्तों को सामने ना दिखा कर भी अहले ईमान की ढारस बंधाई है। तो इस आयत में दरअसल अल्लाह ताला पर ईमान लाने के बाद इस्तेकामत की बात की गई है कि जो लोग भी अल्लाह को अपना रब मानते हैं और फिर उस अकीदे पर जमे रहते हैं, कोई बातिल अकीदा, कोई उसके अंदर शिर्क की मिलावट, कोई लोगों की तारीफ के कलमात या दुनिया की जाहो तलब या ओहदे की तलब उन्हें इस अकीदे से हटने नहीं देती, उनको कोई और चीज़ नहीं चाहिए बल्कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला को अपना उन्होंने रब माना है और अल्लाह ही के लिए वो काम कर रहे हैं, तो किसी बातिल अकीदे को वो उसमें शरीक नहीं करते, तो फिर उन्हीं के लिए फरिश्ते नाज़िल होते हैं जो उनकी हिम्मत बंधाते हैं। जब भी अल्लाह ताला के नेक बंदों ने इस राह में कदम रखा और जब भी वो बातिल परस्तों से टकराए और बातिल परस्तों के सामने उन लोगों ने हिम्मत दिखाई, पामर्दी दिखाई, वो डटे रहे, हक का कलमा बुलंद करते रहे, हक गोई उनकी सिफत थी खास और वो कभी किसी से ना डरे ना घबराए, तो ये जो उनकी हिम्मत थी, ये हिम्मत बंधाने वाले कौन थे? जाहिर सी बात है, अल्लाह ताला ही की तरफ से फरिश्तों का नुज़ूल होता था और अल्लाह ताला ही की तरफ से ये फरिश्ते उनकी ढारस बंधाते थे। ये जो दिल का सुकून और इत्मीनान होता है, दरअसल यही तो फरिश्तों की हिम्मत होती है। हम सब जानते हैं कि जंगे बदर के वक्त, जंगे उहद में, गज़वे खंदक में फरिश्ते नाजिल हुए थे। अल्लाह ताला ने बाकायदा फरिश्तों को भेजा था, हम सब पढ़ते कि 1,000 फरिश्तों से या और उससे ज़्यादा का हमें जिक्र मिलता है। मुर्दफीन का लफ्ज़ आता है कि यके बाद दीगर नाजिल होने वाले फरिश्ते जो एक के बाद एक कतार दर कतार नाजिल हो रहे थे, अल्लाह ताला ने मदद फरमाई थी। तो उस वक्त भी अल्लाह ताला ने अपने बंदों की जो के इस्लाम पर कायम थे और जिन्होंने अपनी जानों की परवाह नहीं की जंगे बदर में, अल्लाह ताला ने उनकी मदद के लिए फरिश्ते नाजिल फरमाए। तो हर दौर में ऐसा होता आया है कि जब भी मोमिनों को, मुसलमानों को जो कलमा गो हैं, जो हक की खातिर कलमा बुलंद करते हैं और हक गोई की वजह से जब उनको किसी तकालीफ का सामना करना पड़ता है, तो अल्लाह ताला उस वक्त उनकी हिम्मत बंधाता है, अल्लाह ताला उस वक्त उनके दिल के अंदर वो इत्मीनान, वो सुरूर, वो सुकून पैदा कर देता है। और ये किस वजह से होता है? ये अल्लाह ताला की तरफ से फरिश्ते नाजिल होते हैं। और फरिश्तों का नुज़ूल हमें वाकई में पता चलता है कि वाकई में फरिश्ते किस तरह से अहले ईमान की हिम्मत बंधाते हैं। शुरू से लेकर अब तक की अगर हम वाकत पढ़ें तो हमें ये बात पर बिल्कुल यकीन आता है। और चूंकि अल्लाह ताला की आयत है, कुरान की आयत है, तो हमें यकीन करना ज़रूरी है कि वाकई में फरिश्ते ढारस बंधाते हैं। ये जो दिल का सुकून और इत्मीनान है, या हक के खिलाफ जब हक के ऊपर कोई मुसीबत आती है तो उस वक्त बातिल के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए जो इंसान की हिम्मत बनती है, तो उस वक्त कौन उसको ढारस बंधाता है, कौन उसकी हिम्मत बढ़ाता है? यही अल्लाह ताला की तरफ से फरिश्ते नाजिल होते हैं। तो फरिश्ते ढारस बंधाते हैं कि बातिल ताकतें कितनी ही जोरावर क्यों ना हो, कामयाबी अहले ईमान ही की होगी। और यही चीज़ इंसान को उस पर जमे रहने देती है, उस पर कायम रहने देती है। हम देखते हैं कि थोड़ा सा हम वाक़ात लेंगे, क्योंकि माशाल्लाह आज की आयतें बहुत ही बेहतरीन है। वैसे तो हर आयत बहुत बेहतरीन है कुरान की, लेकिन हर आयत में हमारे लिए बहुत सारे सबक पोशीदा हैं। आप देख रहे हैं कि हम में से सब जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, जिन लोगों ने अपने आप को दीन के काम के लिए वक्फ किया है, अब हर दौर की आजमाइशें, हर दौर की मुसीबतें, हर दौर की मशक्क़तें मुख्तलिफ रही हैं, हर दौर की तकाजे कुछ और होते हैं। आज के दौर का तकाजा ये कि आज सबसे बड़ा जहाद, आज सबसे बड़ी मशक्क़त और मेहनत अगर लगती है इंसान को, तो वो दीन के काम के लिए अपना वक्त लगाना, अपने आप को लगा देना, कुर्बानियाँ देना, अपनी सलाहियतों की, अपने वक्त की, अपने बच्चों या अपने घर वालों को वो उतना वक्त नहीं दे सकता है जितना कि देना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी अपने आप को दीन के लिए लगा देता है, खपा देता है। तो यही तो आज के दौर की कुर्बानियाँ हुई। और अल्लाह ना करे कि हम पर कोई ऐसी मुश्किल आता है जिसकी सकत हमारे अंदर नहीं है, हमारे अंदर उसको उठाने की हिम्मत और ताकत नहीं है। तो अल्लाह ताला हम पहले ही पनाह मांगते हैं, अल्लाह ताला हम पहले ही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम पर कोई ऐसा बोझ ना डाल जिसे हम उठा ना सकते हों। लेकिन आप देखिए कि जो वाक़ात है पहले के हमारे सहाबा किराम के वाक़ात, उनसे हमें यही सीखने को मिलता है कि उन लोगों ने कैसे हक की राह में सहूबतें बर्दाश्त की, कितनी तकलीफ़ें उठाईं। तो उनको क्या मंजूर था, दरअसल वो क्या चाहते थे, क्यों उन्होंने इतनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की और क्यों उन्होंने इतनी सोबतें उठाई, बर्दाश्त की? क्योंकि उनके सामने जन्नत थी। तो آج دنیا میں اہل ایمان جو بھی تکلیفیں اٹھاتے ہیں یا رنج سہتے ہیں، اس کا بدلہ آخرت میں جنت کی صورت میں ان کا منتظر ہے۔ اس جنت کی وجہ سے ان لوگوں نے یہ تمام تکلیفیں اٹھائیں، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ تکلیف جو ہے آج کے دور کی یہ گزر جائے گی۔ آج کی جو ہماری استقامت ہے، کیونکہ یہاں پر کہا گیا نا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اس پر ڈٹے رہنا، جمے رہنا۔ اور بعض اسکالرز کہتے ہیں، کچھ لوگوں نے ابن جریر وغیرہ کا حوالہ دیا ہے، کہ صحابہ کرام اس بارے میں کہا کرتے تھے کہ اللہ پر ایمان لانا اور اس کے اوپر ثابت قدم رہنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ پھر کسی کو شریک نہ بنانا اور اس کے سوا کسی دوسرے معبود کی طرف توجہ نہ کرنا۔ اور پھر کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے اللہ پر ایمان لایا اور اس پر ثابت قدم رہے، یعنی لوگوں نے اللہ کو اپنا رب کہا اور اس پر ثابت قدم رہے، مرتے دم تک اسی عقیدے پر جمے رہے، وہی دراصل یہ اہل ایمان ہیں۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے عمل کو اللہ کے لیے خالص کر لینا، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عائد کردہ فرائض ہیں اس کو فرما برداری کے ساتھ ادا کرتے رہنا۔ یہ ساری صورتیں اس میں آ جائیں گی، ساری باتیں اس میں آ جائیں گی۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر استقامت کیا ہے۔ بعض اوقات دنیا کا لالچ انسان کو اپنی طرف کھینچتا ہے، بعض اوقات دنیا کا کوئی عہدہ انسان کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور وہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات شہرت ایسی چیز ہے یا ریاکاری ایسی چیز ہے جو انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے کہ اچھا میں یہ دنیا کے فلاں فلاں فائدے کے لیے کام کروں، یا میں اگر استقامت دکھاؤں تو کس لیے کہ لوگ میری تعریف کریں۔ تو اس نے کیا کیا، دراصل اس میں شرک کر لیا نا، اس نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو شامل کر لیا۔ لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ دین کی خاطر کس طرح سے ڈٹے رہے، کس طرح سے جمے رہے، ہمیں ان سے بہت سارا سبق سیکھنے کو ملتا ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ آج کی ہماری تکلیفیں کیا ہیں، آج کی ہماری مشکلات کیا ہیں۔ سب سے بڑھ کر اگر کوئی قربانی دینی پڑتی ہے تو آج ہمیں وقت ہی کی قربانی دینی پڑتی ہے نا، صرف وقت لگانا پڑتا ہے۔ یا اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے کوئی ٹیلنٹ دیا ہے، کوئی صلاحیت دی ہے، تو وہ صلاحیت ہمیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگانی پڑتی ہے۔ لیکن آج آپ دیکھیں کہ وہی تو ہم دینا نہیں چاہتے، وہی ہم لگانا نہیں چاہتے، جبکہ ہم سے پہلے کے جو لوگ گزرے ہیں ان لوگوں نے کیا کیا قربانیاں دیں۔ تو آپ دیکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی جنت ہے، کیونکہ یہاں پر فرمایا کہ وہ ابشر بالجنت التی کنتم توعدون، کہ انہیں جنت کی بشارت دے دو، اس جنت کی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ تو جنت یوں ہی نہیں مل جائے گی، جنت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں بہت ساری تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا، بہت ساری مشقتیں جھیلنی پڑے گی، بہت جد و جہد کرنی پڑے گی۔ جب جد و جہد کریں گے تو تبھی کہیں جا کر آپ دیکھیں کہ ہم کو وہ جنت مل سکتی ہے۔ ایک کسی نے مضمون لکھا تھا اور بہت ہی اچھا مضمون ہے، اور اس میں انہوں نے بتانے کی کوشش کی ہے کہ جو اہل ایمان تھے، اہل ایمان کا کیا طریقہ کار تھا، اہل ایمان کس طرح سے اپنے ایمان پر ڈٹے رہتے تھے، اور اہل ایمان نے حق کی خاطر اور ایمان کے لیے کتنی قربانیاں دیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام یا جو بھی لوگ پہلے کے دور کے گزرے ہیں، کس طرح سے ان لوگوں نے اسلام کی خاطر اور حق کا کلمہ بلند کرنے کی خاطر کس طرح سے تکلیفیں اٹھائیں، اور اس کے لیے انہوں نے کتنی مشکلات کا سامنا کیا۔ اور یہ جو استقامت ہے، دراصل وہی استقامت ہے کہ مشکل حالات میں اسلام پر اور ایمان پر ڈٹے رہنا، جمے رہنا۔ جب کوئی مشکلات آئیں، جب کوئی قربانی دینے کا موقع آئے، جب مشقتیں جھیلنی پڑے، تو اس وقت رونے دھونے نہ لگنا، اس وقت یہ نہ کہنا کہ اچھا یہ کیا مصیبتوں نے مجھے آ گھیرا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ، یعنی جب دین کا کام کرنا تو بہت دور کی بات ہے، صرف دین کا علم سیکھنے کے لیے ہی لوگ آتے ہیں، اور جب انہیں لگتا ہے کہ اچھا ہمارا گھر ڈس بیلنس ہو رہا ہے، گھر کے کام صحیح نہیں ہو پا رہے ہیں، بچوں کا رزلٹ صحیح نہیں آ رہا ہے، یا گھر والوں سے تھوڑی سی باتیں سننے کو مل رہی ہیں، تو اسی وقت وہ آپ دیکھیں کہ وہ جو دین کا علم سیکھنے کے لیے آتے ہیں اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، اس سے بھی جو ہے باہر آ جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ کیا کبھی ایسا ہو کہ کبھی ہم نے اپنے بچوں کے اسکول چھوڑنے لگائی ہو، یا جو لوگ ٹیچرز ہیں، جو ٹیچرز کے طور پہ کام کر رہے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اسکول جب پڑھانے جاتے ہیں یا کہیں جاب کرتے ہیں، کوئی یونیورسٹی میں جاب کرتے ہیں، کوئی اسکول میں جاب کرتے ہیں، کسی آفس میں جاب کرتے ہیں، تو اگر گھر میں ذرا سی تکلیفیں آئیں تو کبھی کسی نے جاب چھوڑی ہے، کبھی نہیں چھوڑی جاب۔ لیکن ہم دیکھتے کہ جیسے ہی بس دین کی خاطر اگر ذرا سی قربانی دینے پڑے اور دین کی خاطر اگر مشقتیں جھیلنی پڑے، تو اس وقت ساری ہم کو جو یاد آ جاتا ہے کہ یہ دین کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے، اور اس بنا پر بہت سارے لوگ راستہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ تو یہی چیز دراصل یہ غیر استقامت کی نشانی ہے کہ استقامت پر قائم نہ رہنا۔ اور استقامت کیا ہے؟ استقامت یہی ہے کہ چاہے مشکلات آئیں، چاہے मुसीबतें आएं, चाहे सऊबतें आएं, चाहे कुछ भी नुकसान हो, लेकिन दीन पर डटे रहना और जमे रहना, यही इस्तेकामत है। और फिर जब जब इंसान एक दफ़ा अपने आप को अल्लाह ताला की राह में लगा देता है, तो यकीन जाने कि इस तरह से उसकी ढारस बंधाई जाती है, इस तरह से फरिश्तों का नुज़ूल होता है, और इस तरह से उसके दिल को इत्मीनान और सुकून हासिल होता है कि वो बड़ी से बड़ी कुर्बानी देते हुए भी ना डरता है ना हिचकिचाता है। हम थोड़े से वाक़ियात देखेंगे। किसी ने बहुत ही अच्छा लिखा था, मुझे ख़ुद ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा पसंद है। किसी ने किताब लिखी थी तन्हाई का घर, और इतनी बेहतरीन उन्होंने किताब लिखी, माशाल्लाह इतनी बेहतरीन पैराए में उन्होंने इसको बताया है। और इसमें दरअसल बताने की कोशिश की गई है कि कैसे कैसे जो मर्द हक थे, जिन्होंने हक की खातिर अपनी जानों को लगा दिया और अपने हक की खातिर उन्होंने हर तकलीफ़ और सऊबत बर्दाश्त की, तो उनकी याद फिर कैसे ताज़ा रह गई, कैसे उनका नाम बाकी रहा और कैसे आज भी उनका नाम जिंदा है। जिन लोगों ने भी हक की खातिर कुर्बानियाँ दी, इस्तेकामत दिखाई, उस पर डटे रहे, जमे रहे, वो भले ही दुनिया से चले गए हों, लेकिन उनके नाम को आज तक कोई मिटा ना सका। और जो आखिरत का अजर है वो तो है ही है बाकी, लेकिन दुनिया में भी आप देखें कि अल्लाह ताला ने किस तरह से उनका नाम बाकी रखा कि उनके नाम को देखकर लोग अपने ईमान दुरुस्त करते हैं। सुभान अल्लाह, ये रुतबा मामूली नहीं है, ये हर एक को नहीं मिलता ये रुतबा, जिसको मिलना है ये उसी को मिलता है। तो तन्हाई के घर के नाम से उन्होंने एक किताब लिखी थी, इसके राइटर असद गिलानी हैं, वो लिखते हैं, मैं लज्जतों को फना कर देने वाला मुकाम हूँ, मैं गुरबत का घर हूँ, मैं कीड़ों मकोड़ों का घर हूँ, मेरे दिन रातों से ज़्यादा वहशतनाक हैं, मेरी वसत कब्र से कुछ ज़्यादा और मेरी वीरानी तन्हाई गोरिस्तान से किसी सूरत कम नहीं। मेरे उन तारीख दिनों और तारीख तर रातों के रफीक इंसानी माशरे के वो रौंदे हुए अफराद हैं जिनकी मौजूदगी खुद अपने वजूद से शर्म दिलाती है। मैं अंदर ही अंदर घुटन महसूस किया करती हूँ, उनकी बेसब्री की वहशियाना हरकत का मुझे हज़ारों बरस से सामना करना पड़ रहा है। कोई किसी का खून बहाकर खूनी माजी लेकर अपने तारीख हाल के साथ मेरी तंगी को तंग तर करने के लिए आ जाता है, और कोई किसी ऐसे घिनौने जुर्म का मुर्तकिब होता है कि उसकी रफाकत से मेरे दरो दीवार को घिन महसूस होती है, और मेरे फर्श ने अपनी इस तौहीन पर बारहा खामोश फरियाद की है। और यही वजह है कि मैं तन्हाई का घर हूँ, मैं गुरबत का घर हूँ, मेरे दिन मेरी रातों से ज़्यादा तारीख और मेरी रातें मुजरिम के ज़मीन से ज़्यादा वहशतनाक होती हैं। लेकिन मेरे उन तारीख और सोगवार मकरू और घिनौने वहशतनाक और अजियत कोश शबरोज में कुछ दिन ऐसे भी हैं जो मेरी तारीख ज़िंदगी में हीरे की कन्नी की तरह चमकते हैं। कुछ ऐसी रातें भी हैं जिनकी ज़ियाबारी यानी चमक की वजह से सूरज ने अक्सर हिजाब से अपने चेहरे को ढांप लिया है। कुछ ऐसे भी दिन हैं जिन पर मुझे अक्सर मतलाए सुबह नशूर का धोखा हुआ है, यानी सुबह सादिक का। वो शब रोज़ मेरी ज़िंदगी का हासिल, मेरी रूह का सरमाया और मेरे हज़ारों बरस के घिनौने माहौल का बदल हैं। उन दिनों के बदले अगर मुझे कोई सूरज की तमाम शुआएं भी दे तो ना लूँ, और उन रातों के एवज़ मुझे कोई चौदहवीं के चाँद की ज़ियाबारी भी मतलूब नहीं है। अब आप बताइए कि ये क्या, किस चीज़ के बारे में कहा गया है, कि किसका जिक्र हो रहा है यहाँ पर? यहाँ तन्हाई का घर कहा गया, लेकिन कब्र नहीं है। उर्दू बहुत टफ थी, सॉरी, लेकिन किसका जिक्र है? आप लोग समझ गए होंगे थोड़ा बहुत सुनकर, कोई बता सकता है? नहीं, कब्र नहीं है, मैंने पहले ही कहा कि कब्र नहीं है, जहन्नुम भी नहीं है। दुनिया भी नहीं है। अब देखिए, पहले वक्त बताया गया कि मेरे मतलब मुझे ऐसे ऐसे दिन और रात देखने पड़े कि माशरे के ऐसे लोग मेरे पास आए कि जो जुर्म से भरे हुए थे, कैद खाना, जज़ाकल्लाहु खैरन, माशा बारकल्लाहु फीकी, कैद खाना, जेल, जज़ाकल्लाहु खैरन, बारकल्लाहु फीकी, माशाल्लाह। अब मैं पहला पढ़ती हूँ, फिर इसका भी आंसर आप जहन में रखिएगा। उन्होंने लिखा है, यानी ये दरअसल जेल है जो फरियाद कर रही है, एक कैदखाना है, कोठरी है, काल कोठरी है, जो फरियाद कर रही है कि मेरे मतलब मैं तो इस कदर ऐसी जगह हूँ कि जहाँ पर हर ज़माने के बुरे लोग ही आते हैं, मुजरिम लोग ही आते हैं, जिसकी वजह से मैं खुद परेशान रहती हूँ कि ये कैसे मुझे मतलब मुझे किस चीज़ का घर बना दिया गया कि सारे ज़माने के ख़राब लोग मेरे पास आते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मैं, यानी जेल खाना, खुशकिस्मत है कि मेरे पास ऐसे भी लोग आए जो चंद ही लोग थे, लेकिन उनकी वजह से मेरी वो तारीख रातें रोशन हो गईं, सूरज से ज़्यादा रोशनी में मैं नहा गई। क्यों? क्योंकि ऐसे ऐसे लोग मेरे पास आए। उसमें से पहला हम पढ़ते हैं कि कौन कौन लोग आए थे। गौर से सुनिएगा, उर्दू थोड़ी टफ है लेकिन प्लीज़ ध्यान से सुने। उन दिनों में मुझे वो दिन अच्छी तरह याद है जब 21-22 बरस का एक नौजवान कई बरस के लिए मेरे दरो दीवार में इसलिए महबूस किया गया था। महबूस का मतलब है कैद, ठीक है। तो इसलिए महबूस किया गया था कि बाहर का माहौल उसकी फितरत की पाकीजगी, उसकी इस्मत निगाह और उसकी इफ़त किरदार का मुतहमिल ना हो सका था। यानी वो बहुत ही बाकिरदार इंसान था, बाहर का माहौल उसके उस पाकिज़ा किरदार को कबूल ना कर सका। उस वक्त मेरा सीना ही उसका अमानतदार था। मिस्र के रऊसा की बेगमात ने अपने अखलाक और किरदार का सारा सरमाया उस नौजवान के कदमों में ला डाला था और वो उसे ठुकरा कर तहारत फ़िक्र और जब्त नफ्स के जुर्म की सज़ा भुगतने के लिए मेरे हवाले कर दिया गया था। मैंने उसके शब रोज़ को बरसों तक देखा। मेरी ज़मीन उन दिनों आसमान का हम पल्ला थी। ये गालिबन पहला मौका था कि मेरी रातें रोशन और दिन रोशन तर थे और मैंने अल्लाह वाहद का नाम सुना जब उसने अपने दो ग़ुलाम कैदियों के साथ कहा, साथियों से कहा, ऐ जिंदा के साथियों, तुम खुद ही सोचो कि बहुत से मुतफरक रब बेहतर हैं या वो एक अल्लाह जो सब पर गालिब है। उन दिनों मैंने अल्लाह रब्बुल आलमीन की ख़ास रहमतों को अपने दरो दीवार पर तौफगन देखा, यानी अल्लाह ताला के रहमत का साया, और मैंने महसूस किया कि अल्लाह की इस सरजमीन पर इंसान के नाम से जो एक मखलूक है उसमें फरिश्तों से भी ऊंची परवाज रखने वाले अफराद मौजूद हैं। जज़ाकल्लाह खैरन, माशाल्लाह, यूसुफ अलैहिस्सलाम थे ये, ठीक है। अब सेकंड पर्सन का यहाँ पर जिक्र हो रहा है। वो दिन भी मैं कभी नहीं भूलूंगी जब काफिले इंसानियत के इमाम नबी अरबी का एक रफ़ीक यानी साथी चंद दिन का भूखा प्यासा मेरी गोद में ला डाला गया था। वो नबी अरबी जो उन दिनों इंसानी काफिले को जाहिलियत से इस्लाम की तरफ और वहशत से तहजीब व तमद्दुन की तरफ और शिर्क व बुतपरस्ती से अल्लाह की वहदानियत की तरफ लाने के लिए जान हथेली पर रखे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उस रफ़ीक को तबलीग दीन के लिए रवाना किया था और कुफ्फार ने दगाबाजी से गिरफ्तार करके कैद कर दिया था। उसके शब रोज़ को भी मैंने गौर से देखा। कुफ्र के उस माहौल में उसकी ज़ुबान अल्लाह की हमद से तर थी। उसका दिल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से मामूर था। उसकी हिम्मत को मैंने हिमालय से बुलंद पाया जब उससे कहा गया, अगर तुम इस्लाम को छोड़ दो तो तुम्हारी जान बख्शी हो सकती है। और उसने फांसी के खंभे के ऐन नीचे खड़े होकर कहा, जब इस्लाम न रहा तो मैं जान को रख कर क्या करूँगा। और वो दो रकात नमाज पढ़कर अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक नेज़ों से छिदा हुआ सूली पर लटक गया। उसकी गैरत ने यह भी गवारा ना किया कि नमाज को तूल दे, मुबादा उसे मौत का डर समझा जाए। आह, उन मुकद्दस कदमों में जंजीरों की झनकार अब तक मेरे दरो दीवार में गूंजती है और वो दिन बिजली का कौंदा बनकर मेरे सियाह खाने पर चमक जाते हैं। जी नहीं, मुसअब बिन उमैर नहीं, ये खुबैब रदी अल्लाह अन्हु। हज़रत खुबैब रदी अल्लाह अन्हु, जबकि हम सब जानते हैं कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों को भेजा था एक ग्रुप बनाकर दीन की तबलीग के लिए, तो दो लोगों को कैद कर लिया गया। हज़रत खुबैब रदी अल्लाह अन्हु उसमें एक थे जो पकड़े गए और एक साथी वहाँ से फरार हो गए थे। तो खुबैब रदी अल्लाह अन्हु के बारे में आता है कि जब इनको कैद किया गया, और आपको याद होगा मशहूर वाक़ा कि चूँकि ये जंगे बदर में भी थे और खुबैब रदी अल्लाह अन्हु को जब कैद किया गया तो इत्तेफाक से एक दिन कोई जो घर जिस जेल में उनको रखा गया था, जिस कालकोठरी में उनको रखा गया था, उसी के घर की कोई लड़की खेलते खेलते इनके पास आ गई अंदर और वो उनकी गोद में बैठ गई। और इन्होंने उस वक्त तो उस तरह मांगा था अपने जो भी एक्स्ट्रा जो होते हैं चीज़ें निकालने के लिए, तो वो माँ डरने लगी कि ये शायद मेरी बेटी को कुछ उस जो उनके हाथ में शार्प चीज़ थी उसे कोई नुकसान ना पहुँचाए। तो कहने लगे कि तुम कैसे डरती हो, भला मैं कैसे किसी बच्ची पर ये इस तरह का जुल्म कर सकता हूँ, और मेरे दीन ने तो मुझे ये सिखाया ही नहीं है। और वो बच्ची को वापस भेज दिया। और फिर उनको कहा जाता है कि जब उनको हैंग किया गया और उनको छेदा जा रहा था, नेजे फेंक फेंक कर उनके ऊपर मारे जा रहे थे, फिर उनसे पूछा गया कि अच्छा आखिरी तुम्हारी ख्वाहिश क्या है, तो कहा कि मुझे दो रकत नमाज पढ़ने दिए जाए। उन्होंने दो रकत नमाज पढ़ी तो नमाज को तवील नहीं किया कि लोग ये ना समझे कि अच्छा मैं मौत के डर से नमाज को तवील कर रहा हूँ। जंगे बदर में जिन जिन लोगों जो जो लोग उस वक्त मारे गए थे काफिरों में से, तो उन सब के बेटों ने भाइयों ने अपने अपने तौर पर इनको नेजे मार मार कर शहीद किया। और उनकी ज़ुबान पर आप देखें कि उन्होंने कैसे कहा था कि मुझे इस्लाम छोड़कर क्या फ़ायदा, जब इस्लाम ही ना रहा तो मैं अपनी जान को रख कर क्या करूँगा। कहा जाता है कि जब अबू जहल ने अपनी जूती की नोक से उनकी पेशानी पर मसल कर कहा था कि क्या तुम चाहते हो कि हम तुम्हें छोड़ दें और तुम्हारी जान बख्शी हो जाए और तुम्हारी जगह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, तो तड़प कर उठ पड़े और कहा कि वल्लाह हम तो ये भी नहीं चाहते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक कांटा भी चुभे। आप देखिए कैसा ईमान था, किस कदर इस्तकामत थी कि इस्लाम जान से ज़्यादा अजीज़ है, इस्लाम हर तकलीफ़ से ज़्यादा अजीज़ है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने आप से ज़्यादा मोहब्बत है, कि ख़ुद को तो तकलीफ़ गवारा है कि ख़ुद की पेशानी मस्ती जा रही है जूते से, लेकिन ये बात गवारा नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कांटा भी चुभे। ये होती थी मोहब्बत। ये जब भी तो कहा गया था ना कि जो अल्लाह के रसूल ने कहा था कि मन आता लिल्ला व मन अलिल्ला व अबगदा लिल्ला व हुब्बा लिल्ला फ़क़द इस्तकमल ईमान, कि जिसने दिया तो अल्लाह की खातिर, रोका तो अल्लाह की खातिर, किसी से मोहब्बत की तो अल्लाह की खातिर और किसी से बुग्ज़ रखा तो अल्लाह की खातिर, उसने अपने ईमान को कामिल कर लिया। उनकी तारीफ़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई और हमें एक दो वाक़ियात मिलते हैं सही अहादीस के ज़रिए से कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील अमीन उनकी ख़बर लेकर आए थे कि उन्होंने आपको सलाम कहा है। सुभान अल्लाह, ये ऐसे लोग थे इस्तक़ामत वाले। तो ये खुबैब रज़ी अल्लाह अन्हु थे। फिर तीसरा जो वाक़िया हमको मिलता है, उन जंजीरों का नगमा भी मेरे लिए रूह अफज़ा है। और मेरा सरमाए इफ्तिखार जब एक मर्द हक पाँव में बेड़ियाँ और हाथों में जंजीरें पहने मुझे दाग मफारकत दे मक्के से मदीना रवाना हुआ था। गोया एक बिछड़ा हुआ पंछी है जो अपने झुंड से मिलने के लिए बेताब था। वो जंजीरें झंझनाता और बेड़ियाँ घसीटता ऐन उस वक्त अपने साथियों के पास पहुँचा था जबकि मुआहिदा तकमील पा रहा था। कुफ्र के सफ़ीर ने बिगड़ कर कहा, मुआहिदे की रूह से इसे हमारे हवाले किया जाए। मुआहिदा भी मुकम्मल नहीं हुआ था लेकिन खुलूक अजीम ने हुक्म दिया कि उसे कुरैश के हवाले कर दिया जाए। यूं एक मजदूम अपने साथियों के सामने तकरीम अहद के एवज मशकें बांधे, जंजीरें पहने, कुशा कुशा मेरी तरफ लौटाया गया। वो दिन मेरी ज़िंदगी का सरमाया है जब वो कुफ्र के गढ़े में कैदोबंद के दिन गुजारते हुए अल्लाह की अजमत व जलाल बयान किया करता था और मेरे दर व दीवार का जर्रा जर्रा हमतन गोश होकर सुना करता था। इस तरह एक साल के अंदर अंदर उसने कुरैश में से 300 सईद रूहों को नबी अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम का हमनुवा बना लिया था। अबू जंदल रदियल्लाहु अन्हु, जज़ाकल्लाहु खैरन, ये हम सब जानते हैं कि जब सुलह हुदैबिया हो रहा था तो ये जंजीरों में बंधे हुए थे और कितने साल कैद रहे आपको मालूम है? कई साल। हम देखते हैं कि 13-14 साल से ज़्यादा उन्होंने कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की, लेकिन आप देखें कि उनके इस्तकामत में कमी आई। हमें कहीं पढ़ने को मिला अबू जंदल रदी अल्लाह के बारे में कि उन्होंने कभी एक कलमा शिकायत का कहा हो कि अल्लाह ताला ये कैसा इस्लाम है कि इस्लाम कबूल करते से मेरी तो पूरी ज़िंदगी, पूरी जवानी मेरी कैदोबंद में गुजर गई। और सिर्फ कैद नहीं किया गया था उनको अबू जंदल रदी अल्लाह को, बल्कि बेड़ियों से, जो लोहे की बेड़ियाँ होती हैं, जंजीरें होती हैं, उससे उनको जकड़ा गया था, उससे उनके पाँव में बेड़ियाँ डाली गई थी। और ये नौजवान थे, नौजवानी की उम्र में कैद हुए और कई साल कैदोबंद की सोबत इन्होंने उठाई, लेकिन कभी आप सोचें कि कभी उन्होंने शिकायत की? कभी हमको उनकी सीरत से ये वाक़ा मिलता है कि उन्होंने अल्लाह ताला से शिकायत की कि अल्लाह ताला ये क्या है, ये किस तरह की मुसीबतें हैं इस्लाम कबूल करते से ही? आप उनकी इस्तकामत देखें, कैसी उनकी इस्तकामत थी, किस कदर उनके अंदर मजबूती थी। तो ये सब ये किस कैसे था? ये अल्लाह ताला की तरफ से था ना। अल्लाह, जब इंसान, जब बंदा अपने आप को अल्लाह ताला के हवाले कर देता है, जब बंदा अपने आप को अल्लाह ताला के सुपुर्द कर देता है और उसको जब अल्लाह ताला से इनामत मिलने की उम्मीद होती है, तो फिर अल्लाह ताला इस तरह से फरिश्तों के ज़रिए से उनकी ढारस बंधाता है, फरिश्तों के ज़रिए से उनको फिर मदद आती है, फरिश्तों के ज़रिए से उनके दिल पर सुकून और इत्मीनान तारी होता है। हम ज़रा 2 मिनट के लिए गौर करें, मेरा और आपका क्या हाल है? हम जब ये वाक़ियात पढ़ते हैं ना तो दिल शर्म से पानी पानी हो जाता है, अजीब सी कैफियत होती है, इतनी शर्मिंदगी होती है और इतनी निदामत होती है कि हमारी क्या कुर्बानी है, क्या कुर्बान कर रहे हैं हम आज? क्या नींद कुर्बान कर रहे हैं? क्या हमने अपनी सलाहियतों को कुर्बान किया है? क्या अपना वक्त हम दे रहे हैं? क्या हमारे घर वालों को हमने लगा दिया इस राह में? क्या अपने बच्चों को लगाया है, कुर्बान किया है? या अपना माल दिया है अल्लाह की राह में? इस कदर हमने तो कुछ भी नहीं किया, जो चीज़ एक्स्ट्रा है हमारे पास हम वो तक देने को तैयार नहीं होते, तो आप सोचें कि अपनी जान हम क्या लगाएंगे। तो ये आयतें पढ़कर, कुरान पढ़कर, हम इतने सालों से रमज़ान आ रहा है और इतने सालों से हम रमज़ान में कुरान की तिलावत पढ़ रहे हैं, क्या ये आयतें हमें झंझोड़ती नहीं हैं? ये वाक़यात हमारे लिए सबक और इबरत के लिए काफ़ी नहीं है? कि इन आयतों में इस बात का हमें यकीन नहीं दिलाया जा रहा है कि तुम्हें जन्नत मिलेगी? आज दुनिया में तुम थोड़ी सी कुर्बानी दो, मशक्क़त उठाओ, लेकिन बदले में तुम्हें क्या मिलेगा? वो जन्नत मिल रही है जो कि कभी ना ख़त्म होने वाली है। और ये तो आप देखें कि शुरू से होता आ रहा है ना, यानी आज के दौर में भी वही हालात हैं। आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आज आप देखिए, इस्लाम पर डटे रहना, जमे रहना कितना मुश्किल काम है। हम सब जानते हैं कि आज भी कितने बेगुनाह मुसलमान जेलों में पड़े हुए हैं। कितने लोग जो है साल हर साल से जेलों में बगैर किसी जुर्म के पड़े हुए हैं। ये तो शुरू से होता आ रहा है, शुरू से, हमेशा से। यानी लोग जुर्म करके जेल में जाते हैं। सोचना जरा, जो यूसुफ अलैहिस्सलाम का भी हमने पढ़ा कि लोग जुर्म करने के बाद जेल में जाते हैं, वो जुर्म से बचने के लिए जेल में जाना उन्होंने पसंद किया। सुभान अल्लाह, क्या उनका पाकीज़ा किरदार था, कैसी पाकीज़गी सीरत थी, कि दिल चाहता है कि हम उनकी सीरत खुद अपने अंदर अपनाएं और लाएं। तो शुरू से होता आ रहा है ना कि सितीज़ा कार रहा है अजल से ता इमरोज़, चिराग मुस्तफ़ी से शरारे बुलहबी। थोड़ा सा मुश्किल शेर है, लेकिन ये जो जंग है ये हमेशा से जारी है, शुरू से ये हमेशा चल रहा है। ये आपस में एक दूसरे का मुकाबला हो रहा है, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक और क़यामत तक जारी रहेगा, हक और बातिल की जंग। मोहम्मद सल्लम जो मिशन लेकर आए थे, उससे अबू लहब की जो दुश्मनी थी, आपने देखा होगा ना कि अबू लहब क्या करता था। ये जो शरारे अबू लहबी, जो अबू लहब की शरारतें थी, जो अबू लहब की बदतमीज़ियाँ थी, कि पत्थर लेकर पीछे पीछे जाता था और मारता था और कहते थे कि इसकी बात ना सुनना। लोगों ने पूछा कि ये कौन शख्स है जो कि आगे जाने वाले शख्स के पीछे जा रहा है और पत्थर मारता है और कहते हैं कि इसकी बात ना सुनना। लोगों ने कहा कि ये मोहम्मद सल्लम का चचा है। लेकिन आप देखें कि इस्लाम की वजह से कितनी दुश्मनी उसके अंदर पैदा हो गई थी। तो शुरू से होता आ रहा है इस तरह से, आज तक है ये। तो अबू जंदल रदी अल्लाह अन्हु थे जिन्होंने कई साल कैदोबंद की तकलीफ़ों को बर्दाश्त किया और आखिरकार अल्लाह ताला ने उनको वहाँ से निजात दी। फिर मेरी ज़िंदगी के वो दिन भी मेरी तारीख किस्मत के आसमान पर चमकते हुए तारों की मानिंद है, जब एक मर्द हक इबन हुबैरा और अबू जाफर के जुल्म का मुकाबला करता हुआ मेरी सूनी ज़िंदगी को तकद्दस से मामूर करने के लिए एक मेहमान अजीज़ बनकर आया था, और इस तरह आया कि फिर ज़िंदगी की आखिरी सांस तक मुझसे कभी जुदा ना हुआ। वो सीधा मेरे यहाँ से अपने रब के हुजूर पहुँच गया। उसने इब्न हुबैरा और अबू जाफर का आलेकार बनने से इनकार कर दिया था। उसने हक पोशी का मसलक इख्तियार करने वाले उलमा के अजीम हजूम में से निकल कर अपने आप को हक पनाही के मनसबे जलील पर खड़ा कर दिया था। उसने मसलहत कोशी और मुदाहिनत को धुतकार कर अपने हाथ से निकाल दिया था। उसका जुर्म यह था कि उसने हक फरोशी से इनकार किया। उसने कुरान की आयत का कारोबार करने से इनकार कर दिया था। उसने अल्लाह से डर कर इंसानों के डर से अपने दिल को खाली कर लिया था। और मेरी आंखों ने देखा, और मुझे वो जुल्म याद है जब मैं अल्लाह के यहाँ इब्न हुबैरा और अबू जाफर के खिलाफ गवाही देने के लिए हुजूर हक में खड़ी होंगी तो मैं साफ साफ शहादत दूंगी कि उसे कोड़ों से पीटा गया, उसका जिस्म बरहना करके ताजियानों की मुसलसल मार मारी गई, उसकी पीठ जख्मों से खून चुका थी और खून बहकर एड़ियों तक पहुंच गया था, उसे अजियतें दी गईं और जालिमों ने उस पर ज़िंदगी तंग कर दी, लेकिन वो मर्द हक जानता था कि ज़िंदगी की असल कुशादगी रब्बुल आलमीन की मर्ज़ी में है। इसलिए उसने तमाम जब्बारों की मर्ज़ी को ठुकरा कर अपने रब की मर्ज़ी अख्तियार कर ली, और वो बदनसीब मेरी आंखों के सामने जबरन फ़र्श पर पटखा गया और दरो दीवार ने यह नज़ारा अपनी आँखों से देखा जिसमें इबरत छुपी हुई है, और मेरा फ़र्श उसके खून के कतरों को आबदार मोतियों की तरह महफूज रखे हुए है, और मैं उसके हक में गवाही दूंगी, और मैंने उसके खून के कतरों को उस मताए बेबहा की तरह अपने पास महफूज कर रखा है। कौन थे ये? नहीं, बहुत बाद की बात है ये। उनको जेल में डाला गया था और जेल में ही उनकी जान गई। उन्होंने उस वक्त के हुक्मरानों ने जो ओहदा उनको देना चाहा या जो बात मनवाना चाहिए, उन्होंने उसका इनकार कर दिया था। इमाम अबू हनीफा, उनके बारे में आता है कि उनको फिर आखिर में जहर का प्याला दे दिया गया था, या फिर वो जेल की सौबतों को बर्दाश्त करते करते ही आखिरकार अपने रब से जा मिले। इमाम अबू हनीफा का जिक्र है ये। अब एक और हम सुनते हैं, गौर से सुनिएगा और ध्यान दीजिएगा। इसीलिए इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ी होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मुताला करना चाहिए। मेरे पास वो शख्स भी लाया गया जो इमाम दारुल हिजरत कहलाता था, जिसके इल्म व अज़मत का सिक्का पूरे आलम इस्लाम में रवा था। मैंने उसे अपने पास इस हाल में देखा कि उसकी मुश्कें कसी हुई थीं और उसके पाँव में बेड़ियाँ थीं। वो भी जुर्म हक गोई की पादाश भुगतने के लिए महबूस किया गया था, यानी कैद किया गया था। उसकी मुश्कें उस जोर से कसी गई थीं कि हाथ बाजू से उखड़ गए थे और 70 कोड़ों की ज़रबें उसके जिस्म पर मेरे सामने एक एक करके पड़ीं। उसी हाल में वो फरीज़े शहादत अदा करने के लिए उसी ऊँट पर खड़ा हो गया जिस पर तजलील व तशहीर के लिए उसे सवार कराया गया था। उसने पुकार पुकार कर कहा, जो मुझे जानता है सो जानता है, और जो नहीं जानता तो वो जान ले कि मैं मालिक बिन अनस का बेटा हूँ और इस मसले का ऐलान करता हूँ जिसके ऐलान से मुझे जबरन रोका जा रहा है कि जबरी तलाक कोई चीज़ नहीं। मैंने देखा कि उसकी अजीमत के आगे शाहों की कलकियाँ झुक गई थीं। उसकी रफाकत में गुजरे हुए वो दिन मेरी गुनाहगार ज़िंदगी का हासिल हैं। उन्हीं दिनों की याद मेरे मुस्तकबिल के लिए रोशनी का मीनार है। कौन है ये? बहुत बड़ा क्लियो आप लोगों को मिल गया है इसमें। इमाम मालिक, आप देखें कि इमाम दारुल हिजरत, अगर जिन लोगों ने तदवीन हदीस किया था उन लोगों को याद होना चाहिए था कि इमाम दारुल हिजरत कौन कहलाते हैं। उनको पेपर में भी ये सवाल था, तो इमाम दारुल हिजरत इमाम मालिक को कहा जाता है। तो इमाम मालिक थे ये, जिनको एक मसले पर ज़बरदस्ती उस वक्त के जो लोग थे गवर्नर्स वगैरह, उन लोगों ने मजबूर किया था कि आप ये फतवा जारी करें कि अगर जबरन तलाक दिलवाई जाए, यानी कोई किसी को फोर्स करके तलाक दिलवाना चाहता है, जैसे मिसाल के तौर पर एक पर्सन है, जैसे मैं इत्तेफाक समझे नहीं, ऐसा समझे कि कोई आकर कहता है, कोई दोस्त कहता है अपने दोस्त को कि तुम अपनी बीवी को तलाक दे दो, और वो फोर्स करे कि तुम दे ही दो तलाक अभी, या कोई माँ फोर्स करवा रही है कि तुम तलाक दे दो अपने बीवी को, तो ये फोर्स करके दिलवाई गई तलाक ये कोई मानी नहीं रखती, ये इस्लामिक रूल है एक। तो उनसे कहा जा रहा था कि आप ये फतवा दें कि ये जबरी तलाक हो जाती है, लेकिन उन्होंने नहीं दी और बात नहीं मानी। तो उस बात को ना मानने की वजह से उनको महबूस किया गया, यानी कैद किया गया, और उनके ऊपर कोड़े मारे गए, और उनको कहा जाता है कि सवार भी करवाया गया था ताकि उनकी बेइज्जती हो, लेकिन उन्होंने खुद कहा कि जो नहीं पहचानते वो भी मुझे पहचान ले कि मैं मालिक बिन अनस का बेटा हूँ, इमाम मालिक रहमहुल्ला। वो सब्र इस्तक़लाल का शहंशाह, वो तहम्मुल व बुर्दबारी का हिमालय, वो गुर्बत व हक गोई का मुजस्सम ज़हूर, वो जिसकी हक गोई के सामने मामून मोतसम और वासिक जैसे जाबिरों के ज़ुल्म तशद्दुद का ज़ोहरा आब आब होता था, वो कई साल तक मेरा शरीक शब व रोज़ रहा। वो दिन मेरी ज़िंदगी का सुहाग थे और मेरी वीरान आबादी की रौनक के पुरबहार थे। मैंने उस अज़्ज़ो शर्फ़ की मेराज को एक ज़माने तक अपने सीने में अमानत का आबदार मोती बनाकर रखा है। मैंने उस मोतसिम की बेचारगी और दरमांदगी को उसके सामने दस्तबस्ता देखा है, जिसकी हैबत और रौब से कैसर रूम लर्जा व तरसा रहा करता था कि वह बड़ी मिन्नत और खुशामद से उस शख्स से मुखातिब था जिसे जल्लादों का एक ताज़ादम दस्ता घेरे हुए था। वल्लाही मैं तुम पर इससे भी ज़्यादा शफ़क़त रखता हूँ जिस कदर अपने बेटे के लिए मुशफ़िक हूँ। अगर तुम खल्क़े कुरान का इकरार कर लो तो कसम है रब की कि अभी अपने हाथों से तुम्हारी बेड़ियाँ खोल दूँ। यानी उस वक्त का जो बादशाह था खलीफतुल मुस्लिमीन, वो आकर कह रहा है कि मैं अपने बेटे से भी ज़्यादा तुमसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन तुम बस मेरा कहना मान लो और ये फतवा दे दो कि ये कुरान अल्लाह ताला की मखलूक है। लेकिन ये शफ़क़त पीकर हक पर बेअसर थी। वहाँ सिर्फ एक जवाब था, अल्लाह की किताब में से कुछ दिखला दो या उसके रसूल का कोई कॉल पेश कर दो तो मैं इकरार कर लूँ, उसके सिवा मैं कुछ नहीं जानता। और फिर उसने देखा कि चार चार बोझल बेड़ियाँ उसके पाँव में डाली गईं। उस बोझ से वो हिल ना सकता, उठता था और गिर पड़ता था। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में जबकि धूप खाल को झुलसती थी, उसे मेरे सहन में जलती धूप में बिठाया गया, और सिर्फ बिठाया ही नहीं गया बल्कि लगातार कोड़े मारे गए। हर जल्लाद दो ज़रबे लगाकर हट जाता था और उसकी जगह ताज़ा दम जल्लाद आता था, और वो जवां मर्द हक की पुश्त बनाही के लिए पहाड़ की तरह कायम था। वो रोज़े रखे हुए था और पीठ कोड़ों के ज़ख्मों से खून चुका थीं। मुझे अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म ही झुका सकता है, और वाक़ यह है कि उसे कोई न झुका सका। जो सिर्फ अल्लाह के सामने झुका हुआ था, उसकी पेशानी हर जब्बार के जबर से बुलंद बाला थी। मैं अगरचे तन्हाई का घर हूँ और गुरबत का घर हूँ, लेकिन मैंने ऐसे ऐसे शहंशाहों को भी अपनी आगोश में जगह दी है। اور انسانیت کی ایسی ایسی عظیم امانتوں کو بھی اپنے دامن میں رکھا ہے۔ میں انہی دنوں کی یاد سے اپنے سیاہ خانے کو روشن رکھتی ہوں۔ یہ کون تھے؟ امام احمد بن حنبل، جزاک اللہ خیرن۔ ان کو فتنہ خلق قرآن کے لیے قید کیا گیا تھا اور ان سے کہا جا رہا تھا کہ تم یہ فتویٰ دے دو کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، جب اگر تم یہ فتویٰ دے دو گے تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ رمضان میں ان کے سامنے پانی اس طرح سے بہایا جاتا، ان کے منہ کے آگے سے پانی ڈالا جاتا تھا اور وہ پانی نہیں پی سکتے، یعنی روزہ بھی افطار کرنے کے لیے ان کو پانی نہیں دیا جاتا تھا۔ اب سوچیں کیسی کیسی تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ اور یہ فتنہ خلق قرآن جو تھا، کیوں انہوں نے بات نہیں مانی؟ اگر وہ چاہتے تو کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے، قرآن بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، کیا نقصان ہو سکتا تھا اس کا؟ کیونکہ ہم کو یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے، ہم قرآن جب پڑھ رہے ہیں تو ہم کو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بارے میں ساری چیزیں معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کیا ہے۔ بار بار پہلے دن سے آپ کو کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کیا ہے؟ جی، اللہ تعالیٰ کا یہ جو قرآن ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو اللہ تعالیٰ کا کلام مخلوق کیسے ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ، اگر ہم اس طرح سے کہیں گے تو پھر نعوذ باللہ یہ بھی ہو جائے گا کہ اچھا اللہ تعالیٰ مخلوق ہے، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کرے۔ تو ایکچولی بہت بڑی اس کے پیچھے یعنی گہری بات تھی چھپی ہوئی، کہ اگر اللہ تعالیٰ کے کلام کو ہم مخلوق مان لیتے تو مخلوق پھر ختم بھی ہو سکتی ہے، فنا بھی ہو سکتی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں نا، غلطی کس سے ہوتی ہے آپ بتائیں، بھول چوک کس سے ہوتی ہے؟ غلطی کس سے ہوتی ہے نا؟ مخلوق سے ہوتی ہے، خالق سے تو نہیں ہوتی۔ تو مخلوق سے پھر کہتے کہ اچھا قرآن سے یہ بھول ہو گئی ہے، چونکہ یہ مخلوق ہے لہٰذا یہ فلاں آیت نکالو، یہ بھول سے اس میں آ گئی ہے، یہ غلطی ہو گئی ہے اس میں۔ تو آپ دیکھیں کہ پھر اللہ تعالیٰ کی کتاب کا کیا حال ہوتا ہے، جو آج تورات کا حال ہے، ہم سب جانتے ہیں انجیل اور تورات کا، کہ انہوں نے جو ہر سال ان کا پینل بیٹھتا ہے اور ہر سال کہتے کہ اچھا یہ والی آیت صحیح نہیں ہے، یہ ذرا غلط ہوگی، اس کو نکال دو، دوسری لے آؤ اس کی جگہ، دوسرا اسٹیٹمنٹ لے آؤ۔ ہر سال بیٹھ کر وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اس طرح سے انہوں نے کھلواڑ بنا رکھا ہے کہ اس کو چینج کرتے جاتے ہیں۔ تو اگر آج امام احمد بن حنبل یہ فتویٰ دے دیتے تو آپ دیکھیں کہ آج کتنا برا حال ہوتا نا۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، کہ انہوں نے ہم امت پر کتنا بڑا احسان کیا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ جو استقامت تھی نا، یہ استقامت تھی، اور یہ ہر دور میں ہوتا آیا ہے۔ حق کا کلمہ کہنا، ظالم اور جابر بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا، یہ بھی سب سے بڑا جہاد ہے اصل میں۔ آج آپ دیکھیں کہ کس قدر بک جاتے ہیں نا لوگ، کس قدر، آپ دیکھیں کہ فتوے جو آتے ہیں نا، کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجے فقیحان حرم بے توفیق، کہ آج تو ذرا سے دنیاوی فائدوں کے لیے آرام سے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ اس طرح سے کھلواڑ کیا جاتا ہے کہ اچھا اپنے من چاہے، لوگوں کے من چاہے فتوے دیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیت کے ساتھ مذاق بنا رکھا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں حلالہ اور اس طرح کی چیزیں، سود وغیرہ، یہ سب یہ کچھ جائز نہیں ہے، لیکن اس کے فتوے موجود ہیں۔ تو یہ سب کیا ہے دیکھا جائے تو؟ تو یہ امام احمد بن حنبل ڈٹے رہے اور جمے رہے، یہی استقامت ہوتی ہے اصل میں۔ اگر ہم کو استقامت کے معنی جاننا ہے نا، تو یہ جتنے واقعات ابھی آپ کے سامنے ڈسکس کیے جا رہے ہیں نا، یہ سب استقامت کے معنی ہیں، کہ جس چیز کو آپ نے حق جانا ہے، جو صحیح چیز ہے، اس پر پھر ڈٹے رہنا، جمے رہنا، اس سے پھر پیچھے نہیں ہٹنا، کہ اگر مشکلات آئیں، مصیبتیں آئیں تو پیچھے ہٹ جانا۔ پیچھے ہٹ جانے والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ کن کا کام ہوتا ہے پیچھے ہٹنا؟ کون لوگ ہوتے ہیں جو کمپرمائز کر لیتے ہیں، جو سرنڈر کر دیتے ہیں اپنے آپ کو، جو حالات کی تقاضوں کے تحت بہہ جاتے ہیں؟ کون لوگ ہوتے ہیں؟ منافق ہوتے ہیں۔ جی بالکل، منافق ہوتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا سورہ فتح میں آتا ہے کہ شغلتنا فی اموالنا و اہلنا، وہ صلح حدیبیہ میں گئے نہیں تھے وہ لوگ منافقین، کیوں؟ کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ ہم شیر کی کچھار میں جا رہے ہیں، اپنی موت کو خود اپنے ہاتھوں دعوت دینا تھا اس وقت مکہ میں داخل ہونا۔ تو انہوں نے اس وقت بہانہ بنا دیا کہ ہم کو ہمارے اہل اور ہمارے مال نے مشغول کر رکھا ہے۔ آج ہمارے بھی ریزنز کیا ہوتے ہیں آپ بتائیے، آج ہمارے بھی ایکسکیوزز کیا ہوتے ہیں؟ یہی سارے ایکسکیوزز ہوتے ہیں نا ہمارے، کہ ہمارے مال نے، ہمارے اہل نے ہمیں بزی کر دیا ہے۔ اور مطلب پتہ نہیں کیا ہم نے بچوں کو تو ایسے ہوا بنا لیا ہے، کہ جیسے پہلے زمانے کے لوگوں نے جیسے بچوں کی تربیت کی نہیں۔ ہم ہی ایک ماں باپ ہیں کہ جو ہم اپنے بچوں کو اس قدر اس طرح سے ریز کر رہے ہیں، بچوں کے لیے ہر یعنی بس بچوں کا یا تو بہانہ ہم بناتے ہیں یا بچوں کا کھانا پینا، اور اس وجہ سے ہم اس قدر دین سے دور ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ ہی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ جی بزی ہیں، بس دنیا میں بزی ہیں نا۔ تو یہ معمولی بات نہیں استقامت کے ساتھ۔ آپ دیکھیں نا، وہی والی بات ہے کہ کوئی بھی چیز حاصل کرنے کے لیے کچھ قربانی دینی پڑتی ہے، ایون دین سیکھنے کے لیے بھی قربانی دینی پڑتی ہے۔ تو آپ دیکھیں، دین سیکھنے کے لیے اصحاب صفہ آئے تھے نہیں آئے تھے اللہ کے رسول کے پاس؟ صحابہ کرام روزانہ مسجد نبوی آتے تھے نہیں آتے تھے؟ کیونکہ ان کو دین سیکھنا تھا، ان کو قرآن پڑھنا تھا، ان کو قرآن حفظ کرنا تھا، کیونکہ قرآن حفظ کر رہے تھے، پڑھ رہے تھے، سمجھ رہے تھے، جبھی تو آگے چل کر وہ دنیا کے پیشور امام بنے۔ उन्होंने आगे लोगों को सिखाया, आज हम भी जब तक हम कुरान और सुन्नत की तरफ नहीं आएंगे, हम कैसे आप बताएं कि दुनिया के पेशवर इमाम बनेंगे। बैठे बैठे हालत हो जाएगी, हमको कुरान ना पढ़ना आता हो ना हमको समझ में आता हो, और फिर हम ख्वाब देखें दुनिया की पेशवाई और इमामत की, कैसे हो सकता है भला, कैसे पॉसिबल है। तो इन आयतों को पढ़कर कभी एहसास करें कि इस्तेकामत क्या होती है, इस्तेकामत किसे कहते हैं। ये मामूली बात नहीं, फरिश्तों का नुज़ूल मामूली बात नहीं है। फरिश्तों का नुज़ूल उस वक्त होता है जब हमारे अंदर इस्तेकामत हो। जी बच्चों को इतना पैम्पर्ड कर देते हैं कि उनको बगैर बच्चे अपने हाथ से छः छः साल सात सात साल के बच्चे हो जाते हैं और माँ कहती है कि जब तक मैं अपने हाथ से ना खिलाऊँ हमारा बच्चा खाता नहीं है खाना, और बेचारी माँ दो दो घंटे बच्चे के पीछे घूमती है खाना खिलाते खिलाते। सोचें जरा कि एक खातून अगर दो घंटे अपने बच्चे को खाना खिलाने के लिए लगाए एक टाइम का, तो दिन भर में अगर उसके दो तीन बच्चों को खाना खिलाती है, अगर एक ही बच्चे को खिलाए दो टाइम, तो चार घंटे तो उसके उसी में चले गए। कि इस्लाम हमें ये तालीम देता है। अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम फरमाए। और भी इसमें बहुत सारे वाक़े थे, मैं एक और वाक़ लेकर फिर इस टॉपिक को आगे हम आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक से। आज भी मैं एक बेश बहा दौलत की अमानतदार हूँ, आज भी फ़ख्र से मैं अपनी गर्दन बुलंद कर सकती हूँ, आज भी मैं कह सकती हूँ कि बड़े से बड़े रईस से ममलकत के कसर बुलंद से मेरा तारिक सीना ज़्यादा रोशन बुलंद बुलंद वक्त और ज़्यादा खुश नसीब है। फिर वह हसीन और जमील सूरत मेरी आंखों से महव नहीं होती जिसने सारी उम्र मेरी आगोश में गुजार दी, जो चार दीवारी में महबूस रहकर भी बिदत और शिर्क का दुश्मन रहा और उसको क़िला कमा करता रहा, जिसकी हैबत से उसके दुश्मन उस वक्त भी कांपते थे जबकि वो कैदोबंद की सख्तियां सह रहा था। आप सोचे कितना असर होगा उनका कि जब वो दुश्मन यानी दुश्मन उनसे कांपते थे जबकि उनको कैद कर दिया गया था, फिर भी उनको डर था उनके दुश्मनों को कि अच्छा ये कैद में रहकर भी कोई और कारनामा अंजाम ना दे। मैं गवाह हूँ कि उसने मेरी मौजूदगी में मेरी ही छत के नीचे बैठकर वो किताबें तरतीब दीं जिन्होंने इस्लाम का चेहरा हर गर्दोगुबार से निखार कर पेश कर दिया। उसकी अजीमत को न मुखालिफों की यलगार रोक सकी और न जाबिरों की कैदोबंद। जब जालिमों ने कैद में उससे कलम और दवात भी छीन ली तो उसने किताब साजी छोड़कर किरदार साजी शुरू कर दी, और वो लोग जो कातिल रहजन और डाकू थे, वो लोग जो जमाए में अखलाक से चूर चूर थे, उनकी उनको चंद ही दिनों में फरिश्ता खस्तत बना दिया। मैंने ये इनकलाब भी अपनी आंखों से देखा कि जिन लोगों को हुकूमत की ताज़ीरें सुधार न सकीं उनकी ज़िंदगियों में उस मर्द हक की एक नज़र ने इनकलाब बरपा कर दिया, और आखिरकार उसने मेरी ही गोद में जान दी। मुझे ये फ़ख्र हासिल है कि मैंने उसकी आखिरी रफाक़त का भी हक अदा किया, जिसने उस कुदसी नफ्स को देखा कि वह अपने परवरदिगार के हुजूर जाने के लिए कितना साफ़ और पाकीज़ा ज़मीर रखता था। उसकी याद भी मेरे सीने का बेश बहा ख़जाना है, और उसकी मायत में गुजारे हुए शब रोज़ भी मेरे लिए बख्शिश का सरमाया है जिसे मैंने ज़माने की दस्तबर्द से महफूज कर रखा है। बारकल्लाहु फीकुम। माशाल्लाह, इमाम इब्ने तैमिया, सही बात है। हम सबको मालूम है कि जब इमाम इब्ने तैमिया जब कैद में जब उनको कैद कर दिया गया, और माशाल्लाह वो हर फील्ड में माहिर थे, वो मुकर्रर थे, वो मुहद्दिस थे, वो मुफस्सिर थे, और माशाल्लाह वो यानी जंग में भी वो आगे थे, जंग में भी वो पीछे नहीं रहे, उस तरह से भी उन्होंने जहाद किया। और जब इनसे किताबों के लिए जब देखा लोगों ने कि किताबें लिख रहे हैं, इनको जेल में रखकर तो कोई नुकसान ही नहीं हुआ, तो उन लोगों ने उनसे पेपर और दवात भी छीन ली। तो उन्होंने जेल के लोगों पर काम किया और कह रहे थे कि जो बड़े बड़े डाकू थे, बड़े बड़े मुजरिम थे, उन पर दावत तबलीग का काम करते रहे, उनके अखलाक को सुधारते रहे। जो उनको याद था उन्होंने कहा था कि मेरे सीने में जो कुरान है उसे तो ये चुरा नहीं सकते, उसे तो कैद नहीं कर सकते, मेरा कुरान मेरे साथ है। सुभान अल्लाह। और आप देखें कि उस कुरान के ज़रिए से उन्होंने वो जिहाद किया और बड़े बड़े मुजरिमों को कहा जाता है कि इतना बेहतरीन किरदार का हामिल बना दिया कि लोग हैरान थे कि जिनको इतने सालों की सज़ा ना सुधार सकी उनको इमाम इब्ने तैमिया की तरबियत ने सुधार दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखें बहाना बनाने के लिए उनके पास कितने ऑप्शंस थे ना, कि अल्लाह ताला मैं कैसे जेल में काम कर सकता हूँ, अल्लाह ताला मैं तो जेल में हूँ, मैं तो बेयारो मददगार हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, कोई सोर्सेज ही नहीं है, मैं क्या करूँ। आप देखिए कि जेल में रहकर भी किताबें लिखी, जब किताबें लिखने से मना कर दिया गया तो उसके बाद भी चैन से नहीं बैठे रहे। हम जैसे लोग होते, अल्लाह ताला महफूज रखिए, अल्लाह ताला वाकई में हमको उनके जैसी हिम्मत ताकत दे, लेकिन हम जैसे लोग होते तो आराम से कह देते थे कि अच्छा अब तो कलम दवात भी छीन ली गई, अब क्या करें, बस हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें। लेकिन उन्होंने आप देखें कि उन लोगों पर काम करना शुरू किया, वो डाकू वो मुजरिम, किस तरह से झड़का नहीं होगा उन लोगों ने, हम सब जानते हैं ऐसे लोगों की क्या आदत होती है, लेकिन वो मुसलसल काम करते रहे, ये इस्तकामत होती है, इसी को इस्तकामत कहते हैं। तो ये जो बात है ना, बार बार आप इसको गौर करें, ये एक आयत पर ही तदब्बुर करें आप, कि इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तखाफू वला तहज़नू व अबशिरु बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून। सुभान अल्लाह, ये एक आयत हमें कितना मोटिवेट करती है कि इसके अंदर इस्तक़ामत की जो बात की गई है कि वो इस्तक़ामत की वजह से फ़रिश्तों का साथ नसीब होता है। हर कदम पर फरिश्ते मदद फरमाते हैं। फरिश्ते कहते हैं कि गम ना करो, डर ना डरो ना, हम तुम्हारे साथ हैं, दुनिया की ज़िंदगी में भी और आखरत में भी तुम्हारा इस्तकबाल करेंगे। तो ये इंसान इस्तकामत इस तरह से दिखाए। फिर एक और आखिरी वाक़ा हम ले लेते हैं। मुझे उस मर्द हक आगा की आमद भी याद है, जब वो आया तो मेरे दर दीवार एक नामालूम ज़िया से चमक उठे थे। उसकी आमद ने मेरी बरसा बरस की तही दामनी को हक पनाही की दौलत से मामूर कर दिया। वो ये कहता हुआ मेरी चहारदीवारी में दाखिल हुआ कि अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह ही की हुकूमत के सिवा और किसी की हुकूमत मुझे गवारा नहीं है, और मैं हर उस शख्स का बागी हूँ जो अल्लाह का बागी है। उस एक कलमे हक ने उसके मुल्क की आज़ाद सरजमीन उस पर तंग कर दी, और वक्त की जाबिर कुव्वतों ने महसूस कर लिया कि असल ख़तरा कहाँ था। चुनांचे जब वो मेरी आगोश में अपने जुर्म में बेगुनाही की सज़ा भुगतने के लिए आया तो मेरे दर दीवार के बैरूनी अतराफ़ ने सुना कि वो उसके खिलाफ वो इल्ज़ामात हवा में फैलाए जा रहे थे जिनसे उसका कोई ताल्लुक न था। वो सब्र सुकून के साथ आया और मेरे शब रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा पुर रौनक बनाता रहा। उसने मुल्क के मसनवी खुदावंदों से साफ साफ कह दिया कि मेरा जुर्म इसके सिवा कोई नहीं कि मैं इस मुल्क में इस्लामी निज़ाम का क़याम चाहता हूँ, और उसका मुतालबा करने में कोई लालच, खौफ और जबर ज़्यादती मुझे बाज नहीं रख सकती, इसलिए कि मेरे नज़दीक तशद्दुद और धांधली और कैदोबंद की दलील कोई वज़न नहीं रखती। फिर उसे सजाए मौत सुनाई गई और उसे फांसी के मुजरिमों में महबूस कर दिया गया। मैंने देखा कि उसके चेहरे पर एक लाजवाल नूर खेल रहा था। वो गोया इस ज़मीन के उन जब्बारों की कम अकली और छिछोरेपन पर मुस्कुरा रहा था। जिस काम को ये लोग एक भरपूर वार समझ कर कर रहे थे, वो उसे अपनी मंजिल की राह में एक कदम समझ रहा था। मुतमईन, मसरूर, बेनियाज, मुतवक्किल, साबिर और सरबुलंद, वो मेरी आगोश में बैठा हुआ दुनिया वालों की हरकत का जायज़ा ले रहा था। और जब उसे मौत की खबर सुनाई गई तो उसने कहा, अगर मेरे रब की मर्ज़ी यही है तो बंदा भी बहुत खुश है कि अपने रब से जा मिले, और अगर उसकी मशीयत ये नहीं है तो फिर किसी के बस में नहीं कि मुझे फांसी पर लटका सके। मैं अगरचे गुर्बत का घर हूँ, तन्हाई का घर हूँ, लेकिन आज मेरा सीना इरफान इलाही के अनवार से मामूर है। मेरी ज़मीन चांद तारों वाले आसमान के हमपल्ला है, और मेरी छत अरश इलाही के कदम बोसी के लिए कोशा है। मेरे शब रोज़ की रिवायती तारीकी ने मेरे गर्दोपेश को रोशन कर रखा है, और मैं समझती हूँ कि जन्नत अदन जिसे कहा जाता है वो शायद इसी खत्ते ज़मीन का नाम है जहाँ एक बंदे हक अपने मौला की मर्ज़ी पूरी करते हुए आबाद हो। आज मेरी तन्हाई और गुर्बत एक वीरानी और सुनसानी जगह से ताबीर की जाती है, लेकिन मेरे पास ये रौनकें और ये रोशनियाँ भी मौजूद हैं। ये लास्ट में कौन थे? जी, मौलाना मौदूदी, जज़ाकल्लाहु खैरन। हम सब जानते हैं कि ख़त्म नबूवत रिसाला लिखने पर उनको कैद किया गया था, और उन्होंने ये डिक्लेयर किया था कि जो अल्लाह के रसूल को आखिरी नबी नहीं मानता है तो एक्चुअली उसका दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो उस वक्त के जो लोग थे उनको ये बात पसंद नहीं आई, और उनको ये बात पसंद नहीं थी कि इस्लाम का सरबुलंद, इस्लाम का परचम बुलंद हो, लिहाजा उन लोगों ने कैद कर दिया। उनको मौत की सज़ा सुनाई गई, फांसी की सज़ा सुनाई गई। उनसे ये भी कहा गया कि अगर आप माफ़ी मांग लेते तो हम आपको छोड़ देते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं माफ़ी किस बात की मांगूँ, मैंने कोई जुर्म किया ही नहीं। और अल्लाह ताला से मुलाकात का शौक़ आप देखें उनके दिल में। तो ऐसे कई वाक़ियात हैं मौलाना, जो हम देखते हैं कि मुजद्दद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने दीन इलाही कहने वालों के ख़िलाफ़ परचम बुलंद किया था, और कल ये हक गोई का कलमा वो कहते कहते जेल में उनको डाल दिया गया। जहांगीर ने उनको कैदोबंद की सोबतों में डाला, और उन्होंने जो है वहाँ से ख़त खतूत लिखे जहांगीर को कि जो दीन इलाही के नाम से अकबर ने नया दीन ईजाद किया था। तो वहाँ पर जेल में रहते रहते उन्होंने खतूत लिखे, और उनके खतूत की वजह से खुद जहांगीर ने तौबा की और उनको वहाँ से फिर आज़ाद किया। तो ऐसे कई लोग हैं, कोई एक नहीं है। तो आप देखें कि ये जो था, ये इस्तकामत होती है असल में, इसी को इस्तकामत कहते हैं। क्योंकि हमारा क्या मामला है कि हम तो खुदा ना खासा छोटी सी तकलीफ भी आ जाती है, जैसे मैंने पहले आपसे कहा था कि दुआ हमने की थी कि अल्लाह ताला हम पर वो बोझ ना डाल जो तूने हमसे पहले के लोगों पर डाला था। तो हम तो थोड़ी सी तकलीफ से आप देखें किस तरह से पीछे हट जाते ना। ज़रा सा हमें लगता है कि अच्छा हमारी कोई जॉब का नुकसान है, हमारी जान का नुकसान होने वाला है, या अल्लाह ना करे हमारे माल का नुकसान होने वाला है, या हमारा घर पीछे रह जाएगा, तो हम क्या करते हैं, फौरन पीछे हट जाते कि नहीं नहीं भाई हमको ऐसा नहीं करना है, हम ये काम में हाथ नहीं डाल सकते, पहले हमारा घर हमको ज़्यादा अजीज़ है, हमारी जान ज़्यादा अजीज़ है, हमारा माल ज़्यादा अजीज़ है, जॉब ज़्यादा अजीज़ है। तो ये जो हदीसें आती हैं, हम देखते हैं कि मुस्लिम की हदीस है कि हुफ्फतुल जन्नत बिल मकारे व हुफ्फतुल नार बिल शहवात। सही मुस्लिम की हदीस है कि जन्नत जो है नापसंदीदा चीज़ों से घेर दी गई है और जहन्नुम शहवात से घेर दी गई है, नफसानी ख्वाहिशात से। हम कहते हैं कि अच्छा हम तो मुसलमान हैं ना, जन्नत तो हमारे लिए पक्की है, जन्नत तो हमको मिलकर रहेगी और बस हमने बस 5 वक्त की नमाज़ पढ़ ली, रोज़े रख लिए, तब भी हमें जन्नत मिल जाएगी। ठीक है, इंशाल्लाह फ़राइज़ की पाबंदी से भी जन्नत मिलेगी, लेकिन ये इस्तकामत और इस तरह का एक तरह से अज़्म और हौसला इंसान के अंदर अगर हो कि वो दीन पर जमा रहे, साबित कदम रहे, अब देखिए उसके दर्जे फिर किस तरह से बुलंद होंगे ना। यानी हम सब जानते हैं कि जन्नत के अलग अलग दर्जात हैं, तो जन्नत ऐसे ही तो नहीं मिल जाएगी ना, जन्नत हासिल करने के लिए सख्त मेहनत, जद्दोजहद और मशक्क़त की ज़रूरत है। तो एक हदीस हमें मिलती है, तिर्मिज़ी की हदीस है, अबू हुरैरा इसके रावी हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह ताला ने जन्नत और जहन्नम पैदा फरमाई तो जिब्रील अलैहिस्सलाम को जन्नत की तरफ भेजा और फरमाया जाओ और जन्नत का नज़ारा करो और जो नेमतें मैंने जन्नतियों के लिए पैदा की हैं उन्हें देखो। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, जन्नत और जन्नतियों के लिए पैदा की गई नेमतें देखीं, फिर अल्लाह ताला की खदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ की तेरी इज्जत की कसम जो भी इसके बारे में सुनेगा वो ज़रूर इसमें दाखिल होगा। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दे कि जन्नत को मुश्किलात और मसायब से ढांप दिया जाए। तब अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को दोबारा हुक्म दिया कि फिर जाओ जन्नत और जन्नतियों के लिए मैंने जो नेमतें तैयार की हैं उन्हें देखो। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम गए तो जन्नत मुश्किलात और मसायब से ढांपी हुई थी, चुनांचे अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज़ की तेरी इज्जत की कसम मुझे डर है कि इसमें कोई भी दाखिल नहीं हो सकेगा। फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया अब जहन्नम की तरफ जाओ और उसे देखो, जो अजाब मैंने जहन्नमी के लिए तैयार किए हैं उन्हें देखो कि किस तरह उसका एक हिस्सा दूसरे पर सवार है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम सब कुछ देखकर वापस लौटे तो अर्ज़ किया तेरी इज्जत की कसम कोई शख्स ऐसा नहीं होगा जो उसके बारे में सुने और फिर उसमें दाखिल हो। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया और जहन्नम को शहवात और लज्जात से ढांप दिया गया। तब अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को फरमाया दोबारा जाओ, जब वो दोबारा गए सब कुछ देख और अर्ज़ किया तेरी इज्जत की कसम मुझे डर है कि अब तो इसमें से कोई भी बच नहीं पाएगा, हर कोई उसमें दाखिल होगा। इस हदीस से हम क्या समझे? इस हदीस से यही समझ में आता है कि जन्नत मेहनत और मशक्क़त से हासिल होगी। यानी जन्नत तो बहुत खूबसूरत है लेकिन उसका उस तक जाने का जो रास्ता है वो बहुत मेहनत तलब है, वो बहुत मुश्किलात से घिरा हुआ है। जो अज़्म वाले हैं वही वहाँ पहुँच सकते हैं। और जहन्नम वो है तो बहुत तकलीफ़ दे लेकिन उसका रास्ता इतना आसान है, हर कोई जो सहल पसंद है, जो नफ्स परस्त लोग हैं, जो ख्वाहिशात के पीछे चलने वाले हैं, जो आराम तलब आराम पसंद लोग हैं, हर कोई वही जहन्नम के रास्ते पर जाएगा, हर एक को वही रास्ता पसंद आएगा। तो फिर ज़रूरत किस बात की आप बताएं? और ये जो हमको काम करना, क्योंकि आगे जो आयत बताई गई है कि इस्तकामत क्यों दिखानी है, क्योंकि अल्लाह के दीन के काम के लिए, क्योंकि अल्लाह ताला फौरन क्या फरमा रहा है, जब अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि अच्छा जो इस्तकामत दिखाएंगे उनके लिए जन्नत होगी, फिर वहाँ पर सामने ज़ियाफ़त होगा, मेहमानी होगी उस गफ़ूर रहीम की तरफ से, और फौरन जो बात आती है आप देखें उसके बाद क्या आता है जुमला आयत नंबर 33 में, वमन अहसन क़ौलन मिम्मन दआ इला अल्लाह व अमिला सालिहन व क़ाल इन्नी मिनल मुस्लिमीन। इससे पता चलता है कि ये इस्तकामत दिखाने के लिए आपको अलल एलान ये बात कहनी होगी कि मैं मुसलमान हूँ और मैं तुम्हें अल्लाह की तरफ दावत दे रहा हूँ, अल्लाह ताला की तरफ बुला रहा हूँ। ये काम तो हमें हमें से हर एक को करना है, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वही शख्स अच्छा हो सकता है, उससे अच्छी किसी और की बात हो ही नहीं सकती, उससे अच्छा कोई और हो ही नहीं सकता अल्लाह ताला के नज़दीक। कौन? जो अच्छा अमल करे, अपने अमल से अपने कॉल से साबित करे कि वाकई में वो मुसलमान है और फिर सीना ठोंक कर कहे कि हाँ मैं मुसलमान हूँ। आपने देखा होगा कि एक वक्त ऐसा आया कि लोग मुसलमान होने से डर रहे थे, अपना नाम जाहिर करने से डर रहे थे, लोगों ने दाढ़ियाँ निकलवा दी, लोगों ने बुरके छोड़ दिए। क्यों? क्योंकि मुसलमान होना एक जुर्म हो गया था। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि और उस शख्स से बढ़कर बात किसकी हो सकती है कि जो नेक अमल करे, अल्लाह की तरफ बुलाए, नेक अमल करे और कहे कि मैं मुसलमानों में से हूँ। इससे पता चलता है कि सबसे बेस्ट काम दुनिया में कोई है तो वो ये है कि अल्लाह की तरफ बुलाना, लोगों को अल्लाह की तरफ, अल्लाह से जोड़ना, और ये हर एक को नहीं मिलता, ये रुतबा हर एक को ये तौफीक नसीब नहीं होती, ये चुने हुए लोग होते हैं। जैसे वो आते हैं ना, मुझे पर्सनली भी ये शेर बहुत पसंद है कि ये रुतबा बुलंद मिला जिसको मिल गया, हर मुद्दई के वास्ते दारो रसन कहाँ। ये इस्तेकामत, ये परेशानियाँ हर एक के नसीब में नहीं होती है। दीन की खातिर जो हम इस्तेकामत दिखाते हैं, दीन की खातिर जो हम इस पर डटे रहते हैं, जमे रहते हैं, हर एक की किस्मत में नहीं आते हैं। स्पेशल लोग होते हैं जो दावा का काम करने वाले होते हैं, जो अपनी ज़िंदगी का मकसद अल्लाह ताला के दीन की सरबुलंदी को बनाते हैं कि हमको अल्लाह ताला के दीन की तबलीग करनी है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला फरमाया कि वही सबसे अच्छा शख्स है, सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा वो है कौन, जो वमन अहसनु कौलम मिम्मन दअ इलल्लाह व अमिल सालिहन। वो अपने किरदार से बताए, वो अपने कैरेक्टर से बताए कि अच्छा मैं अल्लाह ताला की तरफ बुलाने वाला हूँ। उसके बोलने से पहले लोग समझ जाए कि हाँ ये मुसलमान है। ऐसा ना हो कि लोग हमसे ये कहने लगे कि अच्छा हमने तो वो जो इस्लाम है वो तो सिर्फ किताबों में देखा है, हमें तो मुसलमान आज ऐसे नज़र नहीं आते हैं। अस्तग़फिरुल्लाह, कितना कितना बड़ा तमाचा है ना ये हमारे मुंह पर कि लोग कहें, जो रिवर्ट होने वाले हैं वो कहते हैं कि हमने किताबों से पढ़कर इस्लाम की तरफ हम आए हैं, लोगों के अखलाक तो हमें आज ऐसे नज़र नहीं आते मुसलमानों के। तो जब दावा का काम करना है तो दावा का काम कैसे हम करेंगे? एक्चुअल दावा है वो क्या है? हमारा किरदार, हमारा अखलाक, हमारा किरदार बताए लोगों को कि हाँ हम मुसलमान हैं। लेकिन हम देखते हैं कि इसके बिल्कुल ही बरखिलाफ आज हमारा हाल क्या है। हर किस्म की धांधली, झूठ, धोखा दही, क्या कुछ नहीं है, जो भी बुरे अल्फाज आ सकते हैं वो आज मुसलमानों के नाम से मंसूब हैं। कितनी कितना दुख होता है ना, कितनी शर्मिंदगी होती है। तो हमारा हमारा किरदार, हमारा अखलाक बताए कि हाँ हम मुसलमान हैं। आपको याद होगा ना कि जब सीरिया जब मुसलमान गए थे, अबू उबैदा बिन जरा रदी अल्लाह अन्हु, उन्होंने कॉन्कर किया था वहाँ पर, खालिद बिन वलीद और उन्होंने दोनों ने मिलकर, जब वो लोग वहाँ से निकलने लगे, उनको आगे बढ़ने का हुक्म मिला, तो उन्होंने जो जजिया लिया था उनसे, वो जजिया उनको वापस करने लगे। आप सोचें कितना मुश्किल काम है कि हाथ तो आया हुआ पैसा वापस कर देना। तो जो अहले शाम थे वो रो रहे थे और उनसे कह रहे थे कि आप लोग वापस मत जाओ, आप यहीं रहो। ये दुश्मन कहता था, दुश्मन जिसकी अपनी खुद की सरजमीन थी और फातह कौम से, ये दुश्मन कहता है कि तुम यहाँ से ना जाओ, और उनके जाने पर वो लोग रो रहे हैं। सोचें ज़रा कि कैसा, क्या उनका किरदार और क्या उनका अखलाक था। सुभान अल्लाह, वो लोग ईमान नहीं छोड़ते थे, लेकिन वो लोग भले ही अपना नुकसान गवारा कर लेते थे, लेकिन उनको ईमान इतना अजीज़ था कि वो उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे। ये किरदार था और ये अखलाक था, जब ही तो इस्लाम फैला ना। तो यहाँ पर अल्लाह सुबहान तआला फरमा रहे हैं कि उस शख्स से बढ़कर और कौन हो सकता है, या बेहतर कौन हो सकता है जो अल्लाह की तरफ बुलाए, नेक अमल करे और कहे कि मैं मुसलमानों में से हूँ। और फिर किरदार क्या बताया गया उस शख्स को बुलाने का, जो बुलाने वाला होता है उसका किरदार क्या होगा? वला तस्तविल हसनत वला सय्या इदफा बिल्लति ही आसन, कि नेकी और बदी बराबर नहीं हो सकती है, तुम बुराई को उस भलाई से दफा करो जो बेहतरीन हो। और उसका फ़ायदा क्या होगा कि तुम देखोगे कि जो तुम्हारा दुश्मन था वो तुम्हारा दोस्त बन गया है। सुभान अल्लाह, और यही दुश्मनों को दोस्त बनाना, ये तो सबसे बड़ा गुर है, ये सबसे बड़ा हुनर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से दुश्मनों को दोस्त बनाया था, आप खुद देखें। अम्र बिन आस रदियल्लाहु अन्हु, और फिर एक और सहाबी का हमको नाम मिलता है, अभी इस वक्त नाम याद नहीं आ रहा है, खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु अन्हु, देखिए कि किस तरह से उनके भाई को कहा कि खत लिखा उनको कि मुझे खालिद से उम्मीद है, क्योंकि खालिद की जो तबीयत है वो हो ही नहीं सकता कि वो हक की तरफ आना गवारा ना करे। तो वो जो खत, जब खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु अन्हु को पता चला कि अच्छा अल्लाह के रसूल ने मुझे याद किया है और मेरी इस तरह से तारीफ़ की है, उसके बाद उनका दिल ही नहीं लगा कुफ्र में, वो फ़ौरन दौड़े चले आए, इस्लाम कबूल कर लिया। अम्र बिन आस रदियल्लाहु अन्हु, जो कि वो लोग थे दुश्मनों में शामिल थे, लेकिन जब अल्लाह के रसूल के हाथों आकर इस्लाम कबूल किया तो आपकी मोहब्बत की वजह से वो कहने लगे कि मुझे ऐसे लगता था कि गोया सबसे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह के रसूल मुझसे करते हों, और कहने लगे कि मैंने मोहब्बत और एहतराम की वजह से कभी दिल भरकर और नज़र भरकर अल्लाह के रसूल के चेहरे की तरफ नहीं देखा, इस तरह से मोहब्बत हो गई थी उनको अल्लाह के रसूल से। सुभान अल्लाह, तो ये दुश्मनों को दोस्त बनाना ये मामूली काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है। तो ये दुश्मनों को दोस्त कैसे बनाया जा सकता है? कैसे? बुराई को भलाई से दफ़ा करो। सामने वाला आपके साथ बुराई कर रहा है, सामने वाला आपके साथ बदतमीज़ी कर रहा है, आपकी गीबत कर रहा है, आपकी बुराइयां कर रहा है, कुछ भी कर रहा है आपके साथ, उसने आपको नुकसान भी पहुंचाया, लेकिन हमारी ज़िम्मेदारी क्या होगी? एक मुसलमान होने की हैसियत से, एक दाई की हैसियत से हम क्या करेंगे? उसके साथ अच्छाई से पेश आएंगे, اور ہم پیچھے سے پڑھتے آ رہے ہیں، یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ دشمنوں کو بھی معاف کر دیا، جو جان کے دشمن تھے ان کو بھی معاف کر دیا. تو جو الفاظ ہوتے ہیں وہ کم اثر کرتے ہیں. کیا لکھا ہے یہاں پر کہ ورڈس ول اونلی ٹیک یو سو فار، ڈونٹ جسٹ ٹاک اباؤٹ اسلام، شو دیم. کہ ہم کو بتانا ہے، اپنے عمل سے دکھانا ہے. ہم صرف ہم بول کر دعویٰ نہیں کر سکتے، بول کر دعویٰ کرنے سے بہت کم اثر ہوتا ہے. اصل چیز ہے ہمارا اخلاق، اور پھر ہمارے جو رویے سے، ہماری شخصیت سے اثر ہوگا دعوت کا. ہم اس کو ہم سامنے والے کو سکھا نہیں سکتے، پڑھا نہیں سکتے یا بول نہیں سکتے زیادہ. ہم جتنا اپنے آپ سے ظاہر کریں گے، اپنے رویے سے، اپنے کردار سے، اس کا اتنا زیادہ اثر ہوگا ہمارے اخلاق کا. اور پھر دوسروں کے دین کا مذاق بنانا، دوسروں کے دین کو ڈیگریڈ کرنا، یہ بھی اسلام ہمیں نہیں سکھاتا. اللہ کے رسول نے کبھی بھی کسی کافر یا مشرک کی اس طرح سے انسلٹ نہیں کی، بلکہ رسپیکٹ دیا ان کو. جو دوسرے مذاہب کے لوگ آپ کے پاس آتے تھے، آپ ان کو بھی رسپیکٹ دیتے تھے، ان سے بھی اچھے طریقے سے بات کرتے تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا. تو ہم کو ہم چاہتے کہ اگر سامنے کے دین، سامنے والے جو مذہب کے ماننے والے ہیں، ہمارے دین کی طرف آئیں، تو ہم کو محبت سے ان کو اپنی طرف بلانا پڑے گا، نہ کہ انسلٹ کر کے. تو ہم جتنا ہم پریکٹس کریں گے اسلام کی، وہ زیادہ اثر ہوگا ہمارے دعویٰ کا. جتنا ہم اپنے کردار اور اخلاق سے لوگوں کو اپنے قریب کر سکتے ہیں، اتنا ہماری زبان اور باتوں سے لوگ قریب نہیں ہو سکتے. تو بہرحال ہم اس میں کچھ ٹپس دیے گئے ہیں، آپ لوگ دیکھ لیں. بعض وقت ہمارا معاملہ ہوتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ اچھا، جب ہم دعویٰ کا کام کرتے ہیں تو پہلے شروع میں ہی لوگوں کو حلال اور حرام بتانا شروع کر دیتے ہیں. لوگوں کی داڑھیاں ہم ناپنے لگتے ہیں کہ اچھا کتنی داڑھی ہے، ایک بالشت ہے یا ایک مٹھی ہے، جو بھی ہے. یا لوگوں کے پیجامے ہم ناپنے لگتے ہیں کہ اچھا کتنا اونچا پیجامہ باندھا اور کتنا نیچا رکھنا ہے. یعنی ہم بیکار کی باتوں میں لگ جاتے ہیں جو بالکل ثانوی حیثیت رکھتے ہیں، جو ہمارے دین کے فنڈامنٹلس میں سے نہیں آتے ہیں. مین چیز جو کیا ہوا ہے، توحید. توحید ایکچولی دیکھا جائے تو فاؤنڈیشن ہے، کہ مین چیز ہے توحید. اگر ان کے دل میں اللہ کی محبت آ گئی، ایک اللہ کو وہ ماننے والے بن گئے، جو چھوٹی موٹی چیزیں وہ خود بخود دور ہو جائے گی. اب ہم لوگ اگر ہم کوئی ریورٹ ہے اور وہ ریورٹ پرسن کو اب ہم یہاں ہم سعودی عرب کی رسا عبایا پہنا دیں اور بالکل کہیں کہ نہیں بلیک ہی چاہیے اور چہرے کا پردہ ہی کرنا ضروری ہے، تو آپ بتائیں کہ کوئی نئے لوگ آئیں گے ہماری طرف؟ نہیں آئیں گے. اگر ہم آتے سے لوگوں کو کہیں کہ اچھا تمہاری داڑھی اتنی ہی لمبی ہونی چاہیے، اتنی نہیں ہونا چاہیے، تو لوگ مانیں گے بات ہماری؟ نہیں مانیں گے. تو لہٰذا پہلے مین چیز ہے اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کریں، اللہ تعالیٰ کا تعارف کروائیں، بعد میں یہ ساری چیزیں کہیں. جو اگر جب ایک بار اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا ہو جاتی ہے، تو خود بخود انسان ماننے لگتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اور اللہ کرے کہ واقعی میں ہم یہ کام کو بہتر طریقے سے کرنے والے بنیں. اور مین چیز ہے استقامت، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر استقامت دے انشاءاللہ. اور دیکھیں نا، استقامت ہی کی بات ہے کہ اب آپ لوگ خود جو ہیں ماشاءاللہ موجود، آج کتنے لوگ ہیں ہمارے پاس، 38، پہلے 40 تھے شاید. استقامت ہی دیکھیں کہ پہلے دن ہمارے پر ایسے ہوتے کہ 60-80 یہاں تک تعداد جاتی ہے، اور اب ماشاءاللہ جو استقامت کے ساتھ رہنے والے کتنے رہ گئے ہیں، تھوڑے سے لوگ رہ گئے ہیں. تو یہ استقامت بہت زیادہ ضروری ہے. مین چیز ہے کہ اس پر ڈٹے رہنا، جمے رہنا. آپ کو وہ حدیث یاد ہوگی نا جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ کام بہت پسند ہے جو تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ کے لیے ہو، جس میں مداومت پائی جائے، ہمیشگی پائی جائے. تو تھوڑی سی نیکیاں کریں لیکن ہمیشہ کرتے رہیں. یہ نہ ہو کہ جوش اور جذبے میں آ کر ایک ساتھ پہلے بہت کچھ کر لیا اور اس کے بعد ٹھنڈے ٹھنڈے بیٹھ گئے. نہیں. تو ہم سب اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگانے کے لیے عزم کریں، ارادہ کریں. اور یہ جو واقعات ابھی ہم نے پڑھے ہیں، یہ جو ابھی آپ لوگوں کو پڑھ کر سنائے گئے ہیں، یہ دراصل استقامت کو بتانے کے لیے پڑھ کر سنائے گئے ہیں. مین چیز یہ ہے کہ وہ استقامت ہمارے اندر آئے. اور دوسروں کا غم دیکھ کر ہم کو اپنا غم پھر ہلکا لگتا ہے نا، کہ ان لوگوں نے تو جیل میں جا کر کتنی صعوبتیں برداشت کی. الحمدللہ ہم تو اپنے بہت ہی پرسکون خوبصورت گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی اے سی کی ہوا آتی ہے ہمیں، بہترین صوفے ہیں، کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا دیکھا جائے تو. ایون جو ہمارے اسکول سے جہاں ہم سیکھنے جاتے ہیں اور سکھانے جاتے ہیں، وہ بھی ایئر کنڈیشن ہے کہ نہیں؟ بہترین چیئرز ہیں، بہترین ٹیبلز ہیں، بہترین بورڈ ہیں ہمارے پاس، جانے کے لیے ایئر کنڈیشن وین اویلیبل ہے، ہمارے پاس کاریں ہیں. کیا چیز کی ہمیں آپ دیکھیں تکلیف ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے الحمدللہ. کتنی سہولتیں ہیں، تھوڑا سا ہی کرنا پڑتا ہے بس. ہمیں تو اس زمانے کی جیسی تکلیف بھی نہیں برداشت کرنی پڑی کہ کوئی اس زمانے میں نہ اے سی تھا، نہ فین تھا، نہ کوئی ریڈ کارپیٹ تھے. آج ہم تراوی کے لیے مسجد بھی جاتے ہیں تو کتنے خوبصورت نرم و گداز ہمارے نیچے، پیروں کے نیچے کارپیٹ ہیں. इतनी बेहतरीन हवा है, इतनी खूबसूरत मस्जिदें हैं। मस्जिद नबवी में तो नीचे कंकरियां थीं, ऊपर छत था, और पानी अगर गिरता तो वहाँ कीचड़ हो जाता था। वहाँ पर 9 साल तक के कोई रोशनी नहीं थी। तो जब बहुत हैरान होकर उरवा बिन जुबैर ने आयशा रदी अल्लाह से पूछा कि या उम्मी, क्यों चिराग नहीं जलाया गया, रोशनी क्यों नहीं की जाती थी मस्जिद नबी में? तो कहने लगी कि बेटा, अगर इतना ही तेल हमारे पास होता एक्स्ट्रा, तो हम उससे रोटी ना खा लेते, रोटी तेल से ना खा लेते थे हम। इन्हीं तेल होता ही नहीं था, और तेल रहता भी था तो वो जैतून का तेल वो लोग रोटी से इस्तेमाल कर लेते थे खाने में। तो 9 साल तक मस्जिद नबी में चिराग नहीं चला था। 9 साल तक वो लोग अंधेरे में नमाज पढ़ते रहे, लेकिन कितने बड़े बड़े काम हुए, सोचें जरा। वही मस्जिद नबी में बैठकर हर जंग की प्लानिंग की गई। फतेह मक्का हुआ, असहाबे सुफ्फा थे, सहाबे कराम वहाँ सीखते रहे, सिखाते रहे, हर काम। एक पार्लियामेंट थी मुसलमानों की, एक यूनिवर्सिटी थी माशाल्लाह। वो कितने काम हुए, हमारे पास तो इतने सोर्सेज हैं, इतनी फैसिलिटीज हैं, फिर भी हम कुछ करने को तैयार नहीं। आज अगर हमारे पास बिजली चली जाए तो हम तो बस हाय हाय करते रहते हैं कि अच्छा बिजली चली गई, बिजली चली गई है, और कोई काम नहीं होता हमारा। इवन मसाला तक नहीं पीसा जाता हमारा, आज बिजली चली जाती है तो खाना नहीं बनता है। तो उस जमाने में लोगों ने बगैर बिजली के इतने बड़े बड़े कारनामे अंजाम दे दिए माशाल्लाह। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे के अल्लाह ताला की राह में हम मज़ीद कुर्बानियाँ दे सकें, और मेन चीज़ है इस्तेकामत हमारे अंदर हो इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हमारी कोशिशों को कबूल फरमाए। जो भी टूटी फूटी छोटी मोटी कोशिशें हैं, कुछ है तो नहीं, हम भी सिर्फ बोल ही रहे हैं, असल में कुर्बानी तो कुछ दे नहीं रहे हैं। अल्लाह करे कि हमसे अल्लाह ताला वो काम भी ले ले जो उसके नेक बंदों से अल्लाह ताला लेता है, अपने नेक बंदों से, और हमें तौफीक दे कि अल्लाह ताला की राह में हम भी कुछ मज़ीद कुर्बानियाँ दे सकें, अपना वक्त, अपना माल, अपनी सलाहियतें, अपने बच्चों को, अपने घर वालों को इसमें लगा सकें इंशाल्लाह। और जो भी ज़िंदगी बची है अल्लाह ताला उसको अपने दीन की राह में हमसे ले उससे काम ले लें इंशाल्लाह। आमीन। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।